ओम शांति। तो मैं आपसे बात कर रहा था शक्तियों की ना, ज्ञान से पवित्रता आती है। जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाते हैं उससे पवित्रता, पवित्रता आने से हम परमात्मा असोचता बाप से जुड़ जाते हैं और उससे शांति आती है। पास्ट का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, हम वर्तमान में रहने लगते हैं और शांति आने से हमारे अंदर रूहानी प्यार, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हम गामा रिदम से, कल बताएं गामा रिदम क्या होती है, हम गामा रिदम से बीटा में और बीटा से अल्फा में और अल्फा में आ जाते हैं, अल्फा रिदम में आने लगते हैं और उससे हमारी थॉट स्पीड स्लो हो जाती है और फिर जब हम शांत अनुभव करते हैं तो फिर रूहानी प्यार पैदा होता है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी अभी आपकी अल्फा से थीटा में आ जाती है, रूहानी प्यार में ना थीटा में आ जाती है। कल हम आपको उसको और एक्सप्लेन करें कैसे, हमने कैसे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि कैसे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जो लोगों में हमने ईईजी किया ना और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की, लाल तार हरी तार के भी अमाउंट को नापा था हमने, कि लाल तार हरी तार जो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को भी नाप सकते हैं, वो भी हमने नापी कि कैसे कैसे, पहले दिन क्या थी, सातवें दिन क्या थी, तीन महीने के बाद क्या थी, छः महीने के बाद क्या थी, एक साल के बाद क्या थी, दो साल के बाद क्या थी, वो भी हमने नापा। तो ऐसे हारमोन्स भी जो हमने बताया ना, स्ट्रेस हारमोन्स हैप्पी हारमोन्स होते हैं, वो भी हम नापे, कल बताएंगे उसको हम उनमें क्या परिवर्तन हुआ, ताकि एक एविडेंस बेस्ड, मतलब हर चीज़ की एविडेंस के साथ जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो सारे बकायदा उसकी रिसर्च की गई है ना, DRDO से मिलकर पूरी रिसर्च की गई और फिर ये बात आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में तीर नहीं लगा रहा हूँ ना, शायद राहुल भाई ने पहले दिन बताया था आपको, रिजल्ट बताया पहले दिन, रिजल्ट बताया था ना कैसे कैसे, मतलब ईईजी में क्या परिवर्तन हुआ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में, सिंपैथेटिक सिस्टम पैरासिंपैथेटिक क्या एक्टिविटी में चेंज हुआ, कॉर्टिसोल हार्मोन में क्या चेंज हुआ, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स में क्या चेंज हुआ, है ना, बताया था ना, एंडोर्फिन्स में क्या परिवर्तन हुआ, सातवें दिन में कितना परिवर्तन, सीरोटोनिन लेवल्स में क्या परिवर्तन हुआ, है ना, एंजियोग्राम भी दिखाए थे पहले दिन, हाँ, एंजियोग्राम कैसे खुले, ब्लॉकेज कैसे खुले दिखाए थे ना, हाँ, तो सारे दिखाए ना कैसे कैसे हमने सारी, कैसे रील्स को हमने कोडिंग की थी ना, पहली रील्स और बाद की रील्स, तक पता ना लगे कौन सी रील पहले वाली कौन सी बाद वाली, कौन सी सीडी पहले वाली कौन सी सीडी बाद वाली, किसकी है ये भी नहीं पता लगे, और इंडिपेंडेंट एंजियोग्राफर्स ने उसको एनालाइज किया, ऐसा सारा डाटा भी इंडिपेंडेंट लोगों ने एनालाइज किया, हमने मतलब बायस कहीं भी नहीं रखा। डॉक्टर कलाम साहब भी इस बात के बहुत केयरफुल थे कि कहीं भी बायस रिपोर्टिंग ना हो, एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो, ताकि ये स्टडी जो हम कर रहे हैं ये इसका सच पता लगे कि सचमुच में फ़ायदा होता है भी कि नहीं होता, और होता तो कितना फ़ायदा होता है ना, एक्यूरेट पता लगे, उसमें कहीं भी फैलेसी ना हो ना, कहीं भी मैन मेड एरर्स ना हो ना, राइट। वो इसलिए उसको बकायदा हर चीज़ को एकदम फुल प्रूफ रखा गया था ना। चलिए, तो ये जो है मैं आपसे बात करता हूँ, जो प्यार रूहानी प्यार पैदा हुआ, रूहानी प्यार जब आता है तो हमारा मन और बुद्धि दोनों पवित्र हो गए, बुद्धि में ज्ञान था और मन भी पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्यार आ गया। एक्चुअली ये जो हम ज्ञान को जो मनन चिंतन करने की स्थिति को बोलते हैं ना, जो ज्ञान का मनन चिंतन, जैसे मुरली का मनन चिंतन मंथन या ABCD का मनन चिंतन मंथन करते हैं, इसको हम देही मानी स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम देह में रहते प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको हम अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम देही अभिमानी स्थिति कहते हैं, देही अभिमानी। और जब हमारे अंदर पवित्रता शांति और प्यार आने लगता है, हम महसूस हमारे जीवन प्रैक्टिकली दिखाई देने लगता है, उसको हम आत्मा स्थिति कहते हैं। आत्मा की निशानी ही है पवित्रता, मैं आत्मा हूँ, जब अंदर से समाने लगती है बात, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आने लगती है, तो हमें पवित्रता हमारे जीवन प्रैक्टिकली आने लगती है, शांति प्रैक्टिकल आने लगती है, खाली कहने के लिए ओम शांति नहीं, रियल में ओम शांति होने लगती है, और रियल में रूहानी प्यार, सामने वालों की गलतियाँ, सामने वाले की प्रॉब्लम को फील ही नहीं होती, सामने वालों की अच्छाई दिखाई देती है, बुराई दिखानी बंद हो जाती है, हमें सबको हम स्वीकार करना सीख जाते हैं, क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं आत्ममय स्थिति। जब आत्ममय स्थिति आ जाती है, जब जैसे देहीमानी स्थिति में उठ याद किया तो हमने वहां पवित्रता शांति प्रेम आया, और जब हम आत्ममय स्थिति में रह करके परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे अंदर हमारी विदेह स्थिति बनने लगती है। विदेही माना अब हम अतिंद्रिय सुख का अनुभूति करने लगते हैं, हम सूक्ष्म मन और बुद्धि से कहाँ पहुँच जाते हैं, सूक्ष्म वतन में पहुँच जाते हैं। सूक्ष्म वतन माना बाप दादा की गोद का अनुभव करते हैं, बाप दादा माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो है ही निराकार और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में लाइट की बॉडी के रूप में वहाँ पर सूक्ष्म वतन में विराजमान है, तो हम उनका उनके साथ का अनुभव करने लगते हैं, जैसे वो हम उनकी गोदी में है, वो हमको प्यार कर रहे हैं। तो अतीन्द्रिय सुख माना इच्छाओं से परे, और आनंद आनंद माना देह और देह की दुनिया से परे, कि सब बंधनों से परे। तो वो स्थिति हमें फील होने लगती है आनंद, इसको कहते हैं विदेही स्थिति। और जब ऐसी विदेही स्थिति में रहकर हम परमात्मा को याद करते हैं, अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति में रहकर याद करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति आने लगती है। चलते फिरते भी हम यहाँ रहते दुनिया में ही है, क्योंकि हम विधेयी रहने लगते हैं, यहाँ रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बनकर रहने लगते हैं, अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहने लगते हैं, इस दुनिया से दुनिया में रहते भी दुनिया में नहीं रहते हैं, राइट। जैसे देखा श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण को दिखाते हैं उनके चेहरे पे कैसे कैसा भाव है, अतीन्द्रिय सुख आनंद का भाव है, सदा ही आनंद का भाव में है ना। मीरा को भी क्या दिखाया है, आनंद के भाव में दिखाया ना, भले वो दुनिया में थी किंतु वो उसका उसका आनंद ही अलग था, अतीन्द्रिय सुख में खोई रहती थी, है ना। कहते ना अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो किससे पूछो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति आनंद का झूला जैसा महसूस होता है, हम भले कुछ भी कोई में तंग भी कर रहा हो तो हमें अतीन्द्रिय सुख का झूला महसूस होता है, आनंद का झूला महसूस होता है। और जब हम ऐसी स्थिति को अचीव कर लेते हैं तो फिर हम जो अभी याद कर रहे हैं विदेही स्थिति में रहकर परमात्मा को, या विदेही बाप भी विदेही है, शिव बाबा शरीर ही है किंतु ब्रह्मा बाबा विदेही है, देह में रहते हुए विदेही था, अभी ये देह छोड़ चुका है किंतु अब विदेही है, मतलब बीच में है, दोनों के बीच में ना, परमधाम और इस दुनिया के बीच में है, बिना देह होते हुए भी लाइट की देह है, सिर्फ कौन सी देह, मन बुद्धि संस्कार वाली देह है, तो वो वाली लाइट की बनी हुई देह है, राइट। तो वो फरिश्ते के रूप में सबसे बड़ा फरिश्ता कौन है इसमें, ब्रह्मा बाबा, तो वो जो है वहाँ पर विराजमान है, तो हमें वो अनुभूति कराते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको, क्योंकि हमें आदत किस चीज़ की है, हमें शरीर के साथ रहने की आदत है, तो ऐसी लाइट की बॉडी हमारी भी ऐसी लाइट की बॉडी है, ब्रह्मा के पास भी ऐसी लाइट की बॉडी है, तो शिव बाबा उसके द्वारा हमको, बाबा हमसे बात करते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, उसके द्वारा हमें माता के माँ के प्यार की, बाप के प्यार की, टीचर के प्यार की, सतगुरु के प्यार की, बड़े भाई के बंधु सखा दोस्त के प्यार की, है ना, साजन सर्जन बच्चा, है ना, और भी कोई संबंध, सब संबंधों की अनुभूति करा सकते हैं और कराते हैं, तो वहाँ पर आप ऐसी अनुभूति उनसे कर सकते हो, है ना। और फिर जो है ये हम बाबा के साथ अनुभव करते हैं और अपने मन की बात शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते हैं, वो फिर उनके सोल्यूशन हमें देते हैं, और फिर इससे इस स्थिति में रहने से हमारे हृदय अंदर सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, सत्य को, मतलब सत्य क्या, व्हाट इज द ट्रूथ, पावर ऑफ डिस्क्रिशन, जिसको हम विजडम कहते हैं, विवेक कहते हैं, हमारा विवेक जागृत, सद विवेक जागृत हो जाता है। अभी हमारा विवेक कन्फ्यूज्ड है, अभी हमारा विवेक क्या, कन्फ्यूज्ड है, हमें सत्य को नहीं परख पाते, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, राइट को रॉन्ग समझ लेते हैं और कन्फ्यूज रहते हैं ना, तो अब हमारा विवेक जागृत, सद विवेक जागृत हो जाता है, अर्थात सत्य को परखने की शक्ति पैदा हो जाती है ना। जब सत्य को परखने की शक्ति पैदा हो जाती है तो फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति पैदा हो जाती है, फिर हमारे यथार्थ निर्णय होने लगते हैं, जो राइट निर्णय हम समय पर ले पाते हैं और एक्यूरेट ले पाते हैं, कन्फ्यूज नहीं रहते। देखा होगा अभी हमारी क्या निर्णय शक्ति भ्रष्ट रहती है, हम भ्रष्ट कर ही नहीं पाते, क्या करें क्या ना करें पता ही नहीं लगता है। जब निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो जाती है फिर हम क्या कर सकते हैं, विस्तार को सार में ला सकते हैं। विस्तार कहाँ है हमारा, मन बुद्धि कहाँ फंसी हुई है अभी दुनिया में, मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फंसी हुई है, देखे संबंधों में, देखे पदार्थों में, देखे स्वभाव में, देखे संस्कारों में, मुझे ये खाने को चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे उसके साथ ही ऐसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, आला सलबेलापन, 10 बातें बताई ना पीछे, उन्हीं 10 बातों में फंसी हुई है और 5 विकारों में फंसी हुई है ना, बुद्धि और मन उससे भरा हुआ है ना। तो क्या होता है जब हम, मतलब अब जो देह, हमारा मन और बुद्धि कहाँ फंसा हुआ है, देह और देह की दुनिया में फंसा हुआ है ना। अब इससे हम क्या करते हैं, ये हमारा विस्तार है, अब हम जब आत्मा को समझ आ जाती है, सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, तो अब मन और बुद्धि क्या करते हैं, हम समेट विस्तार से सार में लाते हैं। सार माना, सार है पवित्रता और विस्तार है ये सारी दुनिया। तो इसमें से जैसे कहते हैं भी, हम दूध में से क्या निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं, मक्खन है सार और ये दुनिया है, दूध है विस्तार। 1 लीटर में कितना मक्खन निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा ना, तो वो मक्खन हम निकल जाता है। मतलब अब जो है हम, आत्मा सत्य क्या है इस दुनिया में, हमारे में सत्य क्या है, संबंधों में सत्य क्या है, आत्मा नहीं, और पदार्थ हमारे परमानेंट नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज परमानेंट नहीं है, जो हमने दैवी गुण कमाए वो परमानेंट है, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव 7 गुण है। देह का स्वभाव क्या है? 5 विकार। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद और शक्तियाँ। ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा का संस्कार क्या है? देह का संस्कार आदत क्या है? देह का संस्कार आलस्य है। और आत्मा का संस्कार क्या है? आत्मा सदा अलर्ट है, आलसनीय है। आत्मा की आदत क्या है? सो रहे तो भी हार्ट चल रहा है, तो सो रहे तब भी सांस चल रहा है, सो रहे थो रहे तब भी किडनी खून साफ कर रही है, नहीं? तो आत्मा सदा अलर्ट है, भले आप सो जाओ आत्मा नहीं सोएगी, है ना? तो आत्मा अलर्ट है, अलबेलापन नहीं है आत्मा का संस्कार। आत्मा का संस्कार एक्यूरेट है। क्या है आत्मा का संस्कार? आत्मा कैसी है? हमेशा अलर्ट। और ये क्या है? एक्यूरेट। और दोष नहीं देखती है आत्मा। क्या देखती है? गुण देखती है, गुण ग्राही, है ना? हमेशा दूसरे गुण ग्रहण करती है। आत्मिक स्थिति तो मैं बात कर रहा था आपसे, आत्मा के जो आदतें हैं ना, आत्मा का संस्कार इसके बिल्कुल अपोजिट है ना। ये देह के संस्कार है ना, आत्मा का संस्कार गुण ग्राही है और बदला लेने की भावना नहीं है। आत्मा का संस्कार जो है वो रहम दिली का है, उसको रहम आता है दूसरों की बुराइयों को देख के। कोई हमें गाली दे, हमको उस पर रहम आता है। कोई हमें क्रोध करे, हमें रहम आता है। शक करना नहीं, आत्मा का संस्कार निश्चय। आत्मा का संस्कार अनुमान लगाना नहीं है, विश्वास। ये आत्मा का संस्कार है। आत्मा का संस्कार चिंता करना नहीं है, निश्चिंत, मतलब बेफिक्र बादशाह। सब कोई फिक्र नहीं होता आत्मा, जब हम आत्मज्ञानी स्थिति होती हमारी, हमारी कोई भी फिक्र नहीं होती, किसी बात का भी फिक्र नहीं होता, भय नहीं होता है। हमारा आत्मा का संस्कार क्या है? निर्भयता। आत्मा सदा निर्भय रहती है ना? जितना जितना आत्मज्ञानी स्थिति बढ़ती जाएगी, निर्भयता बढ़ती जाएगी। विदेह स्थिति बढ़ती जाएगी, निर्भयता बढ़ती जाएगी। टाइप ए बिहेवियर नहीं, आत्मा का संस्कार क्या है? धैर्यता। टाइप बी, टाइप बी माना पेशेंस। और पेशेंस आ गए तो कोई पेशेंट नहीं बनेंगे आप। पेशेंट वर्ड कहाँ से आया? पेशेंस से आया। पीपल हु लूज पेशेंस कीप ऑन लूजिंग पेशेंस, दे बिकम पेशेंट्स। पेशेंट वही बनता है जो पेशेंस लूज करता रहता है। और ईर्ष्या नहीं, विश्व कल्याणकारी, सारे विश्व का कल्याण हो ना। तो ये आत्मा का, आत्मा आत्मा माने सती की आदत है ये वाले, राइट? तो आपको मतलब ये वाली आदतें आपकी ऑटोमेटिक बन जाएंगी, ये आदतें छूट जाएंगी। जैसे ही आप आत्मा समझेंगे, ये विकार भी खत्म। काम विकार कैसे खत्म होगा? जितना ज्ञान आपके अंदर आता जाएगा, ज्ञान और पवित्रता आती जाएगी आपके अंदर, काम विकार खत्म हो जाएगा, इच्छा ही खत्म हो जाएगी, ब्रह्मचर्य अपने आप ही धारण होना शुरू हो जाएगा। हम 27 साल की उम्र थी जब हम ज्ञान में आए, शादी हुए 2 साल हुए थे बस, अपने आप ही सब छूट गया है ना। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, एकदम ब्रह्मचर्य। एक घर में रहते, एक बेड पर रहते हुए हम ये मतलब अंदर फीलिंग ही खत्म होगी ये देवान की, कि हम उस पर जाएं, देह की तरफ आकर्षित हों, है ना? देह की आकर्षण ही खत्म हो गया ना, देह की तरफ, किसी की तरफ भी देह की तरफ आकर्षण खत्म हो, मेल फीमेल का मतलब ही खत्म हो गया, ये फीमेल फीलिंग ही खत्म हो गई कि हम ये करें। ऑटोमेटिक अंदर से आ गया, जैसे हमने ज्ञान की गहराई, मुरली को ध्यान से पकड़ा और पवित्र बनने लगे, है ना? सत्य स्वरूप को देखना शुरू किया, अपने को भी और दूसरे को भी, सत्य स्वरूप में व्यवहार करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो गया, है ना? फिर क्रोध, जितना शांति आती जाएगी आपके अंदर और प्यार आता जाएगा, रूहानी प्यार, तो क्रोध खत्म हो जाएगा अपने आप ही। क्रोध भगाना नहीं पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सालों से क्रोध ही नहीं आया, ऐसा गायब होगा, आप सोचेंगे कहाँ गया, है ना? जब शांति मन या वर्तमान में रहना शुरू करोगे और दूसरे को स्वीकार करना शुरू करोगे उसके हर रोल के साथ, क्रोध भाग जाएगा, है ना? और लोभ कैसे खत्म होगा? लोभ खत्म होने के लिए आपको जब अतींद्रिय सुख की अनुभूति होने लगेगी ना, परमात्मा के साथ का अनुभव होने लगेगा, तो आपके अंदर इच्छाएं खत्म होने लगे, लोभ खत्म हो जाएगा अपने आप ही। अतींद्रिय सुख का मतलब क्या? इच्छाएं खत्म हो गई, जिसमें जो मिला जैसा मिला उसमें खुश हैं आप, संतुष्ट हैं, तो लोभ खत्म। मोह कैसे खत्म होता है? जब आनंद की अनुभूति होने लगी तो मोह खत्म हो जाए। जब परमात्मा के साथ देव और देखे दुनिया के बंधन के पार की स्थिति अनुभव करने लगेंगे तो मोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? और जब 8 शक्तियां आपके अंदर आएंगी तो आपके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो ऐसे अपने इनके एंटीडोट है ये, जैसे ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखान शक्ति आने लगती हैं आपके अंदर, ये पांचों विकार ऐसे भाग जाते हैं जैसे थे ही नहीं कभी, राइट? प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो जितना आप ज्ञान, मैंने बताया आपको, फिर सत्य को प्रश्न शक्ति, यथार्थ निर्णय करनी शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। विस्तार को सार में लाना माना हमने देह और देह की दुनिया से बुद्धि जो फैली हुई है, बुद्धि और मन, उससे उस विस्तार से बुद्धि को हम समेट के कहाँ करते हैं, अपनी बुद्धि और मन को पवित्र बना देते हैं और सूक्ष्म वतन में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं? सूक्ष्म वतन माना मन बुद्धि पवित्र होकर हम बाप के साथ का अनुभव करते हैं सूक्ष्म वतन में, मतलब सूक्ष्म वतन वासी सार में आ जाते हैं, वहाँ पे और कुछ है ही नहीं, आवाज़ वहाँ पे नहीं है, बोलचाल की भाषा नहीं है, है ना, वहाँ पर इशारों की भाषा, संकल्पों की भाषा सूक्ष्म वतन में, ठीक है। और फिर वहाँ से भी हम क्या करते हैं, समेटने की शक्ति, अब क्या करते हैं, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन जाते हैं, बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में, शांतिधाम घर में बिंदी बाप, हमारा बाप क्या है, शिव बाबा बिंदी है, और बिंदी बिंदी से कंबाइंड हो जाते हैं। जब बिंदी बिंदी से कंबाइंड होती है तो करंट आने लगती है, करंट माना सचमुच में हमें पता लगने लगता है कि पवित्रता क्या चीज़ है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, मैं आत्मा बिंदु, ये आप बिंदु और हमारा बाप बिंदु, है ना, तो सब कुछ क्या हो गया, और जो बीत गया बिंदु, जो हो रहा है वो बिंदु, और जो होने वाला है वो बिंदु, ठीक है, बिंदु बिंदु हो गया ना सब कुछ, है ना। पवित्रता क्या है, मैं बिंदु, आप बिंदु, हम सब बिंदु और हमारा बाप बिंदु, बिंदु बन के बिंदु को देखो, है ना, तो पवित्रता आ गई, नहीं आ गई। शांति माना क्या है, पास्ट को बिंदु, वर्तमान में बिंदु और भविष्य में बिंदु, शांति आ गई ना, विचार कम हो गए नहीं हो गए। प्रेम माना भी क्या है, हम आप एक परमात्मा बिंदु के बच्चे, हम आपस में भाई भाई, आत्मा बिंदी भाई भाई, है ना, बेसिकली तो हम बिंदी है, आत्मा ही है, भले कोई कुछ भी कर रहा है। फिर अतिंद्रिय सुख का मतलब भी क्या है, बिंदी, है ना, इच्छाएं खत्म माना बिंदी लग गई, सब इच्छाओं को बिंदी लगा दी, फुल स्टॉप लगा दिया, संतुष्ट रहे तो बाबा से मिलन हो रहा है। आनंद का मतलब भी क्या है, बिंदु। दे और दे की दुनिया से हमने बंधन के पार हो गए, और सभी सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, ये भी सब क्या है, बिंदु। और जब ऐसे हम बिंदु स्टेज को अनुभव करने लगते हैं परमधाम घर में रह के, हम हमारी और सबसे ओरिजिनल स्टेज क्या है, बिंदु। फरिश्ता भी वो हम नीचे आने पर स्टेज है, क्योंकि ऊपर सबसे परफेक्ट स्टेज क्या है, बिंदु। तो हम बिंदी की स्टेज में जब आ जाते हैं तो अब सहन करना सहज हो जाता है, करंट आने लगती है और सहन करना सहज हो जाता है। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ ही हैं जिनके साथ किए हैं, हमारे ही घर में है, हमारे ही पड़ोस में है, हमारे ही ऑफिस में है, जिनसे हमने पाप कर्म किए, पिछले जन्म किए हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे ही घर, बताए ना, तो वो कुछ भी करते हैं अब हमको सहन हो जाता है, क्योंकि करंट आ रही है, अब बिंदी लगानी सीख गए तो सहन करना सहज हो जाता है, सूली कांटा बन जाती है, और फिर समा भी लेते हैं, समाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। पहले इतना सा सहन करते, इतना सब लोगों को बताते हैं, अभी कुछ भी हो जाए हम किसी को शेयर नहीं कहते नहीं, बस बाबा से शेयर करते, सहन करके समा लेते हैं, मतलब सहनशीलता आ जाती है, सहन करके दुखी नहीं होते, पहले सहन करके दुखी होते थे, अब सहन करके दुखी नहीं होते। फिर सामना करने की शक्ति हमारे पास, सहन किया, समा लिया, और फिर सामना, और भी प्रॉब्लम जाना चाहती, आ जाओ आ जाओ, जैसे पहलवान होता ना, दो चार को पटका और चौथा पांचवा आ रहा है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम्हारे तुम्हें भी देख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर वो पावर आ जाती है, महावीर जैसे बन जाते हैं, सामना करने की शक्ति। और फिर ऐसे लोग जो हमें तंग करते हैं, वो हमें कुछ हेल्प भी मांगे तो उनको हम फिर सहयोग करने को भी तैयार हैं। और फिर जब इस आठों शक्तियाँ आ जाती हैं तो हमारे सातों एनर्जी बराबर हो जाती है, बराबर माना इसका बैलेंस हो जाता है। नहीं तो अधिकतर लोगों में किसी में ज्ञान बहुत ज़्यादा है, पवित्रता नहीं है, किसी में पवित्रता बहुत ज़्यादा है किंतु शांति नहीं है, कोई ना कोई पास्ट की बात तंग करती है, कोई ना कोई भविष्य की चिंता तंग करती है ना, किसी ने शांति तो आ गई किंतु प्यार नहीं, किसी को माफ़ नहीं कर पाए, किसी एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाए, है ना, उसको अनकंडीशनली माफ़ नहीं कर पाए। और फिर अतिंद्रिय सुख नहीं है, कोई ना कोई इच्छा मन में रह गई है ना, आनंद कहीं ना कहीं फंसी हुई बुद्धि है ना, किसी ना किसी देदारी में बुद्धि फंसी है, कोई चीज़ में बुद्धि फंसी हुई है, तो ऐसे मतलब कोई ना कोई शक्ति कमी हो जाती है, कोई ना कोई गुण की कमी हो जाती है, तो वो फिर इम्बैलेंस है ना बन जाता है। तो यहाँ आके जब आठों शक्तियाँ आने के बाद बैलेंस होने लगता है, और जब बैलेंस होने लगता है तो अब हमारे अंदर क्या आ जाती है, अब ये एनर्जी हीलिंग एनर्जी बन जाती है, ये ज्वालामुखी बन जाता है, क्या बन जाता है, ज्वालामुखी, इसको बोलते ज्वालामुखी योग। आपकी मन और बुद्धि एकदम बिंदी बन के मन बुद्धि को लगन लग जाती है ऊपर बस, है ना, इसको बोलते ज्वाला, ज्वाला स्वरूप योग। अब हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, मन बुद्धि ऊपर परमधाम में टिक जाती है और बस सारे विक्रम जितने पाप कर्म किए ना इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है, सारे पाप कर्म भस्म होने लगते हैं और बीमारियां भी खत्म होने लग जाती हैं। जो भी बीमारी आपको है मन की या तन की, नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो गया है, चिंता बहुत रहती है, डर बहुत लगता है, फोबिया हो गया है, डिल्यूशंस होते रहते हैं, हलुसिनेशंस होते रहते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। आप रियल में, रियल से कनेक्ट होने लगते हैं, लॉस ऑफ इनसाइट खत्म हो जाता है और धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं। और फिर आपके अंदर जो भी बीमारी शरीर में, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एसिडिटी है, दमा है, एलर्जी है ना, जो भी कैंसर है बॉडी में, अस्थमा, जो भी प्रॉब्लम, हड्डियों की तकलीफ है, सब के सब धीरे धीरे देखेंगे आप सब कुछ अपने आप सुधरने लगता है, जादू जैसा होने लगता है, क्योंकि पाप खत्म होते जाते हैं, खत्म होते 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 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे तो पूरे फरिश्ते बन जाते हैं। इस जीवन में रह के भी आप फरिश्ता महसूस करेंगे, सारे 63 जन्म के पाप खत्म हुए तो फरिश्ते, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये रिटर्न, हालांकि मैंने समझा दिया है पर प्रैक्टिस करके आपको ऐसा बनना है ना। ये तो मैंने आपको कोर्स बताया, कोर्स ऑफ इवेंट्स, क्या क्या होने वाला है, पर आपको शुरू कहाँ से करना है, ABCD से, मुरली से। ये मुरली से ही सारा जीवन आपका बदलेगा। मुरली मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस मुरली को पकड़ लो, मुरली को जीवन बना लो। जैसे मेरी जेब में मुरली रहती है, साथ में मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, सिमरन चलता रहता है, उसी से पवित्रता आती जा रही, उसी से शांति आती जा रही, उसी से रूहानी प्यार पैदा होता जा रहा है, उसी से अत्यंत सुख की फीलिंग, आनंद की फीलिंग, शक्तियों की फीलिंग, ठीक है, उसे सातों एनर्जी का बैलेंस होता जा रहा है, उससे हीलिंग एनर्जी बनती जा रही, मेरे पाप कर्म खत्म होते जा रहे, उसे जो शरीर की बीमारी या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और भी जो कोई बीमारी शरीर में है या मन में कोई बीमारी है वो खत्म होती जा रही, राइट। और मैं ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहा हूँ, मेरी आयु बढ़ गई है ना, ठीक है, शरीर की आयु बढ़ती जा रही। तो वो सारा कैसे हो रहा है, इन ऐसे हो रहा है। तो जितना अपने को आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करेंगे, है ना, ये परमात्मा सुप्रीम सोल, ये क्या है, शिव बाबा कौन है, पावर हाउस, है ना, किस चीज का पावर हाउस ऑफ, ये सात गुण की, मैंने एक सिंपल याद करने का तरीका बनाया, KPP LHBP, है ना, KP स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, ये सीक्वेंस याद करने के लिए, जितना के माना ABCD, जितना ABCD का मनन चिंतन मंथन करते जाओगे पवित्रता आती जाएगी, पवित्रता से शांति आती जाएगी, शांति से प्रेम, रूहानी प्रेम, रूहानी प्रेम से अतिंद्रिय सुख, अतिंद्रिय सुख से आनंद, आनंद से शक्ति, ठीक है। सीक्वेंस याद, सीक्वेंस बहुत जरूरी है जी। के फॉर नॉलेज, KP स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, है ना, L KPP LHBP, है ना, LHBP लो हाई ब्लड प्रेशर। हम जब डॉक्टर बनते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद करते हैं, है ना, रट्टा मारते हैं ना एनाटॉमी के मसल्स को, कोई हमारी डिफरेंट बॉडी के मसल्स को, ओवेंस को, आर्टरीज को, उसे ऐसे ही बना लेते हैं, फार्मूले बना लेते हैं ताकि हमेशा याद रहे, भूले नहीं, है ना, रात को भी नहीं भूले, कभी भी कोई याद रहे, है ना, मनेमोनिक्स बना लेते हैं ना, तो उससे हम याद रखते हैं, हैं जी, क्या करें, हाँ हाँ, यस यस। तो इससे, और परमात्मा इस चीज़ का पावर हाउस है, इसलिए जब अपने को आत्मा समझ के हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी ये करंट परमात्मा से आने लगती है, आत्मा की करंट भी बढ़ने लग जाती है ना, राइट, क्लियर हो गई बात आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। इस तरह से हमें कर्म करना, इस तरह से हमें अपने, यही राजयोग है, है ना, राजयोग कुछ और किसी चिड़िया का नाम नहीं है, यही राजयोग है ना। तो मैं समझता हूँ, ये तो आपको मैं कल दिखाया था, कैसे हो देखा था ना आपने, ये भी हमारे साधारण विचार, ये फिक्स्ड आइडियाज जो बताए थे कल मैंने आपको, हमारे जो फिक्स्ड आइडियाज माना बिलीफ सिस्टम्स, नेगेटिव और वेस्ट थॉट में एनर्जी खत्म होती है, फिक्स्ड आइडियाज से भी हमारे जो विश्वास होते हैं ना, आस्थाएं होती हैं, उसके कारण भी हमारी एनर्जी खत्म होती है, और साधारण विचारों में एनर्जी खत्म होती है, और नेगेटिव विचारों में एनर्जी जलती है, काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें एनर्जी मेरी भी जलती है, सामने वाले की भी जलती है। जिसके प्रति करता हूँ ना, क्रोध किया मैंने आपको, तो मेरी एनर्जी भी खत्म हुई, आपकी भी खत्म हुई। काम विकार, मैंने किसी गलत दृष्टि से देखा, उसके भी विचार चलेंगे, मेरे भी चलेंगे, मेरी भी एनर्जी वेस्ट, उसकी भी वेस्ट, है ना। लोभ के कारण भी ऐसा ही होता है, लोभ में भी मेरी भी एनर्जी वेस्ट, उसकी भी वेस्ट। मैंने जैसे मोह किया, मेरी एनर्जी भी वेस्ट, उसकी भी वेस्ट। मैंने अहंकार किया तो उसकी ईगो हर्ट हो गई, तो मेरी भी एनर्जी वेस्ट, उसकी भी वेस्ट। जलती है एनर्जी, बहुत तेजी से खत्म होती है। और जो वेस्ट थॉट्स है ना, वेस्ट थॉट्स, ये वेस्ट थॉट्स हैं। मैंने आलस्य किया, मैं अपने आप को जला रहा हूँ। ये है जैसे लकड़ी जल गई, है ना, और ये क्या है, लकड़ी गीली लकड़ी है ना, ना ना जली ना किसी काम की रही, बेकार होगी ना लकड़ी। अब उसका फर्नीचर बन सकता है क्या लकड़ी का? तो गीली लकड़ी का ऐसा होता है ना, तो आलस्य है ये, मेरी एनर्जी खराब हो रही है, अलबेलापन, दूसरे का नुकसान नहीं मेरा नुकसान, दोष दृष्टि मेरा नुकसान है, बदलने की भावना मेरा नुकसान है, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष, ये मेरा नुकसान हो रहा है, ये इसको कहते हैं वेस्ट विचार। इससे हम थक जाते हैं, आलस करके हम फ्रेश होते हैं क्या? थक जाते हैं, अलबेलापन बन के करके हम थक जाते हैं, दूसरों के दोष देखते देखते हम थक जाते हैं, बदलने की भावना रखते रखते हम थक जाते हैं, चिंता करते करते हम थक जाते हैं, शक अनुमान करते करते थक जाते हैं, डर से हम थक जाते हैं, जल्दीबाजी करके हम थक जाते हैं, और ईर्ष्या द्वेष करके हम थक जाते हैं, एनर्जी खत्म, जल जा, थक जाती है, वेस्ट होती है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हम जल जाते हैं, काम विकार में जल रहे हैं, क्रोध में जल रहे हैं, लोभ में जल रहे हैं, मोह में जल रहे हैं, और अहंकार में जल रहे हैं। समझ गए नेगेटिव क्या और वेस्ट क्या? तो ये नेगेटिव और ये, इनके बाल बच्चे क्या करते हैं, हमें हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, हमें थका देते हैं। तो ये जो है, और पॉजिटिव विचारों से एनर्जी बढ़ती है। तो देखा ना, पावर, इससे पावर ऑफ माइंड कम होती है, इससे भी पावर ऑफ माइंड कम, इससे भी पावर ऑफ माइंड कम, इससे पावर ऑफ माइंड बढ़ती है। तभी हम क्या करें, हम क्या करें, ऐसे विचारों को हम डेढ़ साधारण विचार भी अगर परमात्मा की याद में करें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में करें, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव विचार हो गए। शेव कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी करें, परमात्मा की याद में करें, तो क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव थॉट में बदल गए ना, एनर्जी बदल गई ना। ऐसे फिक्स्ड आइडियाज जो आस्थाएं हैं मेरी, फिजिकल बिलीफ्स हैं, उनको हमने क्या कर लिया, स्पिरिचुअल बिलीफ बना दिए। क्या बना दिया उसको हमने, स्पिरिचुअल इंप्रेशन, स्पिरिचुअल बिलीफ और स्पिरिचुअल संस्कार बना दिए, तो उसकी तो एनर्जी बढ़ गई, राइट। और नेगेटिव विचारों को हमने क्या किया, क्या किया, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों से उसको भी खत्म कर दिया, और वेस्ट विचारों को हमने संस्कार डाल के अच्छे वाले उसको भी खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, सारी चीजों में क्या होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, सबको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। करना क्या है, जितना हम सत्य में टिकेंगे, जितना हम सत्य में टिकेंगे, ट्रुथ हमारी कॉन्शियसनेस में ट्रुथ आएगा, उतना हमारी टीम अपने आप पॉजिटिव होती जाएगी, ठीक है। अब जैसे बाबा की मुरली है, जैसे बताया हर विचार को गहराई में जाओ, इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस, बाबा की एक एक मुरली के पॉइंट को गहराई में जाओ, तो आपका भावना बदल जाएगी, तो भावना से वाइब्रेशन निकलेंगे आपके अंदर से, वो दूसरों को भी टच होंगे, भगवान को भी टच होंगे, फिर भगवान के भी वाइब्रेशन आपको टच होंगे, फिर उसी भावना में रहना शुरू कर दो, सारा दिन उसी भावना में रहो, तो आपकी वृत्ति बदल जाएगी, रूहानी वृत्ति बन जाएगी, आत्मिक वृत्ति बनेगी, आत्मिक वृत्ति से आत्मिक दृष्टि बनेगी, आत्मिक दृष्टि से आत्मिक वायुमंडल, रूहानी वायुमंडल बनेगा, रूहानी वायुमंडल से क्या होगा, फिर जो भी कर्म करोगे वो में क्या होगा, स्पिरिचुअल इंप्रेशन बन जाएंगे, और उसमें स्पिरिचुअल क्या बन जाएंगे, आस्थाएं बन जाएंगे, बिलीफ और स्पिरिचुअल संस्कार। तो ये धीरे 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 आपका जीवन परिवर्तन होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये आपकी ऑटोमेटिक, आपके ट्रुथ में रहते हुए, सत्य परमात्मा सत्य है, उसकी मुरली सत्य है, तो उसमें उसका जितना मनन चिंतन और परमात्मा की याद करेंगे, मुरली पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना आपकी टीम पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और फिर जितना अनरियल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, रोल कॉन्शियस रहेंगे, मटेरियल कॉन्शियस रहेंगे, रिलीजन कॉन्शियस रहेंगे, मैं जैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं कर्मा हूँ, है ना, है ना, हमारे आलू नहीं खाते, हमारे ये नहीं खाते, हमारे ये नहीं खाते, है ना, ये तो देह के धर्म है ना, है ना, ये देह के धर्म है ना, हमारा असली धर्म कौन सा है, शांति, प्यार और खुशी, है ना। आत्मा का धर्म तो ये है ना। तो इसमें भी नहीं जाने का है, इससे भी परे जाने का, ऊपर ऊपर उठो, है ना। और आपकी उतना जितना अनरियल में रहेंगे उतना अपने आप नेगेटिव टीम पैदा होती जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव देखिए अब क्या होगा, अब बीमारी कैसे पैदा होती, कोई बीमारी भी है ना, चार फेज होती है बीमारी पैदा होने की। जो पहली फेज होती है वो साइकिक फेज होती है, साइकिक फेज, पहले मन में बीमारी आती है। कैसे मन में आती है, पहले कोई जब हम एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव साइकिक ट्रॉमा, हमें एक्सेसिव बहुत ज़्यादा और बार बार हमारे रेपिटेटिव हमारी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और इमोशनल ट्रॉमा हमें होता है बचपन से, माता पिता से, भाई बहनों से, स्कूल में पार्शलिटी होती है, होती है ना पार्शलिटी, किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो, किसी एमपी का बच्चा हो, उसको ज़्यादा करेंगे, आपको आपकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, टीचर को आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, बार बार आपको डांटता रहेगा, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, है ना, साथी भी आपको निग्लेक्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ना, माता पिता भी कर लेते हैं, ये लड़का है ये लड़की है, लड़की को निग्लेक्ट करते रहेंगे बचपन से ही और लड़के को आगे करेंगे, है ना, पहले लड़के को खिलाएंगे, लड़का छोटा है तो भी बहन को, बड़ी बहन बैठी, बड़ी बहन है उसको बाद में, तू बाद में खा लियो, पहले इसको खिला दो, है ना। तो बचपन से पार्शलिटी क्या होता है, फील होती है, बच्चे को फील होती है, दो बच्चे हैं माँ बाप के, उसमें से एक को ज़्यादा प्यार करते थोड़े दूसरे को कम, उसका वो पैदा हुए तो एक अच्छा धंधा शुरू हो गया, बिजनेस में कुछ पैसा फ़ायदा हो गया, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ नुकसान हो गया, तो माँ बाप क्या समझते हैं, ये मनुष्य है, ये अच्छा है, तो उसको बहुत ध्यान रखते हैं, और दूसरे को ये भी साइकोलॉजिकल हर्ट्स होती हैं, इमोशनल हर्ट्स, हर बच्चा पर फील करता है ये बातें, उसको ये बात से मतलब नहीं है, नुकसान हुआ का फ़ायदा हुआ है ना, पर उसको फील होता है, राइट, समझ रहे हैं। ऐसे फिर बड़े होते होते जाते बड़े एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव साइकिक ट्रॉमा, उससे हम ऐसा महसूस करते हैं हमें कोई प्यार नहीं करता, और जब ऐसा होता है तो इनसिक्योरिटी, हम अंदर से इनसिक्योर, बिना कोई हमें प्यार ना करे, कोई हमें चाहे नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करे, तो क्या होता है अंदर से हम इनसिक्योर महसूस करते हैं, उससे अकेलेपन की फीलिंग आती, उससे गुस्सा आता है, अकेलेपन में गुस्सा आता है, मैं सबको देखता हूँ कि तो सब मुझे निग्लेक्ट करते हैं, और उससे फिर रिवेंजफुल बिहेवियर, हॉस्टाइल, बदलने की भावना पैदा होती है, उससे फिर फियर पैदा होता है। जब हम अपने अंदर बदलने की भावना रखते हैं तो अंदर से फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है, डर, अंदर किसी को गुस्सा कर लो या किसी को सब रिवेंजफुल बिहेवियर हुआ, व्यक्ति सामने आएगा ना तो आपको उससे डर लगेगा, उससे हमारे अंदर जॉब स्ट्रेस और फैमिली स्ट्रेस होती है, ये सीक्वेंस है, इससे हमारा ब्रेन के जो सेल्स हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कल मैंने बताया दिखाया था ना आपको ब्रेन की सेल्स कैसे काम करती हैं, कैसे मैसेज ट्रांसफर्स होते हैं, और फिर हम अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल होने लगते हैं। जब ऐसा हमारा हमारे अंदर ब्रेन में हाइपर एक्टिविटी, तो हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो एस्ट्राइल कोलिन होता है, उसके लेवल बढ़ जाते हैं, और जब हम इरिटेबल माइल्ड ट्रेमर्स, हमारे हाथ पैर में कंपन होने लगता है ना, थोड़े थोड़े हाथ कांपने लगते हैं ना, जैसे होता है ना एंजाइटी वालों को हाथ कांपने लगते हैं, कंपन होने लगता है ना, और फिर इंसोमनिया, नींद आनी बंद हो जाती है, और ऐसा आदमी हमेशा वरीड दिखाई देता है, चिंता में दिखाई देता है, ऑलवेज थिंक्स ऑफ सम इम्पेंडिंग डिजास्टर। किसी का फोन भी आ गया ना, फोन की घंटी बजी तो क्या फील होता है, कुछ ऐसी खबर तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला, मतलब हर चीज़ में डर लगता है ना। तो ऐसा जब डर लगने लगता है तो हमारे कैटाकोलामिन्स, एड्रेनलिन लेवल्स और नॉर एड्रेनलिन लेवल्स, ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं ना, और इससे क्या होता है, ये ऐसे नेगेटिव विचारों से और इनके चेंजेस होने से अब जो क्या होने लगता है, हमारी जो एंडोथीलियम है, अंदर की लाइनिंग देख रहे हैं, अंदर की लाइनिंग एंडोथीलियम है, अभी क्या होने लगता है, यहाँ पर प्लेटलेट चिपकने लगती है दीवार को, हमारी इंटीमा जो अंदर की एंडोथीलियम है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस जो निकलती रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स, प्लेटलेट्स, खून जमाने वाली कणिकाएं इसके आसपास इकट्ठी होने लगती हैं दीवार के पास, है ना, और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे एंटर करने लगता है दीवार में, है ना, ओके। और फिर जब हमारी इसके बाद साइकोसोमेटिक फेज, अगर ऐसे ही विचार कुछ समय चलते रहे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ महीने चलते रहे और कुछ साल हो गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे इफ सेम सिचुएशन कंटिन्यूज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स, तो क्या होता है, हमारे अंदर फंक्शनल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्या होने लगते हैं, हमारी शुगर हमेशा खाने के पहले 80 रहती थी, चेक कराते थे, खाने के बाद भी ठीक रहती थी, HbA1c हमारा 5 रहता था, 5.5 रहता था 3 महीने का शुगर टेस्ट, अभी हमने शुगर टेस्ट कराया, अभी हमारी शुगर 300 निकलाई, डॉक्टर का एक बार चेकअप करा लो पूरा, तो देखा शुगर पहली बार कराई 300 आ गई, पहले हमेशा 80-90 आती थी, खाने के बाद 110 आती थी, अब देखा तो खाली पेट ही 300 निकलाई। क्या हुआ, क्यों हुआ? वो लगातार जो स्ट्रेस में आप रह रहे थे, यही सिचुएशन महीने दिन हफ्ते महीना गुजर गए और क्या हुआ, वो स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल लेवल अधिक निकलने लगा और उसके ज़्यादा निकलने से आपकी शुगर लेवल बढ़ने लगे और आप ज़्यादा खाने लगे, ज़्यादा मीठा खाने लगे, चबा के खाना बंद हो गया, जल्दी जल्दी मीठा मीठा कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा खाने की इच्छा पैदा होने लगी बहुत ज़्यादा, जीवन में कड़वाहट बढ़ती गई। जब मन में कड़वाहट बढ़ती है तो मीठा खाने को दिल करता है। मूड डिसाइड्स अवर फूड, गलत मूड होगा तो गलत खाना खाओगे। अगर आपके अंदर बिटरनेस आपके मूड में आ गई तो मीठा खाने को दिल करेगा, ठीक है, उसका तो ब्लड शुगर बढ़ी से उससे आपकी डायबिटीज का मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया और हार्ट रेट आपकी पहले 70 रहती थी, अभी देखो तो आपकी हार्ट रेट 100 रहने लग गई, बैठे बैठे 100 रहने लग गई, 110 रहने लगी बैठे बैठे, कुछ नहीं कर रहे हो, दौड़ नहीं रहे, दौड़ने में 110 आनी चाहिए, अभी तो आपकी बैठे बैठे 100-110 है, तो चलोगे तो क्या हाल होगा, 140-150-160 हो जाएगी, थोड़ा सा एक्सर्शन करोगे तो क्या होगा, थोड़ी चिंता हो जाएगी तो 160 हो जाएगी, 150 हो जाएगी, धक धक होने लग जाएगी, तो आप प्रोन हो जाएंगे ना, SVT बनने की, SVT सुप्रावेंट्रिक टैकीकार्डिया के लिए प्रोन हो जाएंगे, सुना आपने। इस तरह से आप उसके लिए आपका लॉन्चिंग पैड बन गया ना, 70-140 जाना कितना मुश्किल है और 100-140-150 जाना कितना सहज है, तो लॉन्चिंग पैड आपका ऐसा, थोड़ी सी भी चिंता थोड़ा सा भी डर क्या करेगा आपको, धड़कन को 140 कर देगा, हाथ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, विश्वास हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, ओके। और फिर BP जो हमेशा 110-70 रहता था, बल्कि आपको कहते मेरा तो लो ब्लड प्रेशर है, अभी चेक कराया तो 180/130 निकला है, पहली बार BP हाई निकला है। अब ये जो किसका रिजल्ट है, आपके इन विचारों का रिजल्ट है ना। क्या हुआ अभी एस्टाइलकोलिन कम हो गया, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई, अभी वो सिचुएशन खतरा था कम हो गया, अब सिर्फ क्या है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहने लगे, आप कमांडो मोड में आ गए, आप जो एक खतरा एक बार आया ना, आप हमेशा ही, जैसे आपने एक बार लगाया, एक बार बम फट गया, अब क्या आर्मी वहाँ लगा दी गवर्नमेंट ने ना, हमेशा वो AK-47 लेके खड़े रहते हैं, यूँ ना यूँ तने हुए खड़े रहते हैं ना, यूँ लेके है ना, अब क्या हुआ बेचारे, वो तो मार के भाग गए, 2-4 लोग मर गए, ये बेचारे रोज मर रहे हैं, कमांडो रोज मर रहे हैं, चिंता में मर रहे हैं, टेंशन में मर रहे हैं ना बेचारे, अब उनको हार्ट अटैक होने शुरू हो गए, वो तो गोली खा के मर गए कुछ लोग तो, और ये बिना गोली खाए मर रहे हैं, ये वैसे दूसरी गोली खा खा के मर रहे हैं, गोली हम खाते हैं रोज ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट की, अब ये दूसरी गोली खा के मर रहे हैं, बीमारी तो ठीक होती नहीं, बीमारी दिन पे दिन बढ़ रही है, अचानक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ठा कर देते हैं, अपने लोगों को मार देते हैं, सुनते हैं ना रोज कैसे कैसे कमांडोज कैसे ब्रेकडाउन होता है उनके अंदर, अपने ऑफिसर को ही मार देते हैं, तो एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ गया, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, तो एस्टाइलकोलिन कैटाकोलमिन ज़्यादा बढ़ गए, तीनों ये दो कैटाकोलमिन हैं, ये कॉर्टिसोल अलग हार्मोन, और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर हिस्टामिन निकलने लगता है ज़्यादा मात्रा में, हिस्टामिन निकलने से खारिश होने लगती है, जैसे दाँत दाँत से पड़ने लगते हैं, दाँत खाली यहाँ नहीं पड़ते हैं, गले में भी पड़ते हैं, सांस की नाली में पड़ते हैं, है ना, तो सांस की नाली में पड़ेंगे, गले में पड़ेंगे तो क्या होगा, नाक में पड़ेंगे तो स्नीजिंग होनी शुरू हो जाएगी, छींकें आएंगी, गले में पड़ेंगे तो सांस की नाली में पड़ेंगे तो दमे की बीमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है, सुना प्रदीप भाई, दमा कैसे शुरू होता है, बचपन से, है ना, ऐसे दमा शुरू हो जाता है, और फिर ये हमारे अंदर हिस्टामिन लेवल बढ़ने लगता है, कभी यहाँ खारिश लगेगी, कभी यहाँ खारिश, कभी अंदर लगेगा, अंदर कैसे करोगे, फेफड़े के अंदर खारिश लग रही, कैसे करोगे, पेट में खारिश लग, कैसे करोगे, है ना, खारिश तो वहाँ भी हो रही है, वहाँ भी सूजन आ रही है ना, जगह जगह सूज जाता है ना, किडनी में ऐसे होना शुरू लगता है, और बॉडी के अंगों में और शुरू होने लगता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से हिस्टामिन बढ़ने लगता है, तो ये है साइकोसोमेटिक वेज, मतलब साइकोसोमेटिक में ना अब साइकी का असर, मन के विचारों का असर कहाँ आने लगा, आपकी बॉडी पर आने लगा, सोमा मीन्स बॉडी, साइकी मीन्स मन, है ना, तो मन का असर बॉडी पे आना शुरू, अब आ गया सोमेटिक फेज, अब ये क्या होने लगता है कि इसमें क्या होता है, आपका एस्टाइलकोलिन लेवल कम हो गया, क्योंकि अभी वो टेंशन सामने है ही नहीं, चैलेंज ही खत्म हो गया, अब कैटाकोलामिन बढ़ा हुआ है, हिस्टामिन भी बढ़ा हुआ है, और एक 5-HT और शुरू हो जाता है बढ़ना, 5-HT, ये केमिकल बढ़ना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में, वो बॉडी ज़्यादा बनाने लगती है, तो इससे क्या इंक्रीज फंक्शन ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स आपकी बॉडी में। अब देखो यहाँ पर आर्टरीज क्या होने लगी, देखो यहाँ पर देखो धीरे धीरे प्लाक बनना शुरू हो गया अभी, है ना, ये फैटी स्ट्रिक बनना शुरू हो गया है ना, इस स्टेज में धीरे धीरे आप कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया, 10% 15% कोलेस्ट्रॉल जम गया है ना, और कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट अंदर जानी शुरू हो गई, ठीक है। साइकिक फेज में इतना नहीं था, अभी कोई ब्लॉक नहीं था, एंजियोग्राफी करो नॉर्मल निकलेगी, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा दिखाई देगा एंजियोग्राफी में, कहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है यहाँ पर थोड़ा दिखाई देगा, किंतु यहाँ पर 10-15% का ब्लॉक आना शुरू हो गया। ओके, अभी क्या होगा, आपने और आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो क्या हुआ, अब जो है आपका ये देखिए फंक्शन हो गया ना, सब ऑर्गन्स का ज़्यादा फंक्शन, किंतु टारगेट ऑर्गन हमारे 8 अंगों में से एक अंग जन्म से कमज़ोर है, मैंने बताया था कल भी, उसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं, वो जन्मपत्री में भी लिखा रहता है हमारे अच्छे पंडित, अभी तो आजकल लिखते नहीं है पंडित, पहले जन्मपत्री में लिखा रहता था, ये बच्चा पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा फेफड़े के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा आँखों के रोग से पीड़ित रहेगा, है ना, मेरी जन्मपत्री में लिखा था बच्चा हार्ट के रोग से पीड़ित रहेगा, हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, और मैं सच में हृदय रोग से पीड़ित हुआ बाद में जाके, जन्मपत्री में लिखा हुआ था ये बात, और 36 साल की उम्र में, इसकी उम्र छोटी है, जवानी में मरेगा, यंग एज में मर जाएगा, इसकी योग है, मृत्यु का योग है यंग एज में, 36 की एज में मर जाएगा, 40 से पहले मरने का योग है, ऐसे ही जन्मपत्री में लिखा हुआ था, तो पर मरा तो नहीं हुआ, अभी तो 60 भी क्रॉस हो गया है ना, तो सुना, और टारगेट ऑर्गन में ना हार्ट, अगर आपके हार्ट है तो आपकी हार्ट की आर्टरीज जल्दी जल्दी ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका स्टोमक है तो अल्सर बनना शुरू हो जाएगा, थायराइड है तो थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इंक्रीज फंक्शन ऑफ द टारगेट ऑर्गन। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है, जब हिस्टामिन बढ़ा, 5-HT बढ़ा, तब क्या होता है, आपके हेरिडिटरी बैकग्राउंड जीन्स आपके काम में आने लगते हैं, अब जीन जाग जाते हैं, आपने ऐसा वातावरण बना लिया, जो जीन जीन ना जो आपके अंदर माता पिता से जीन मिले थे, जैसे मेरे फादर को थी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, उनको 36 में हुई, फिर वो काफ़ी ध्यान से रहा, सारी उम्र रहे, 63 में वो मर गए, डेथ हो गई उनकी। ऐसे मुझे भी 37 की एज में, 37 में मुझे हो गई हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, हो गई तो मुझे तब हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी हुई, सिम्टम हुए, तकलीफ हुई, बहुत इरेगुलर हार्ट बीट हुई, तो मेरे जीन थे जो माता पिता से मिले थे वो जागृत हो गए, कुछ स्ट्रेस रही, कुछ बचपन से रिजेंटमेंट रही, कुछ प्रॉब्लम्स रही, है ना, हमेशा प्रेशर में रहा, तो मेरे जीन जागृत हो गए, है ना, और ऊपर से एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो जितनी भी स्ट्रेस है ना, तनाव है, आपके जीन को जागृत कर देते। आपके फादर को 60 की उम्र में प्रॉब्लम आई थी, डायबिटीज आई थी, आपको 30 में आ जाएगी अगर आप सारा टाइम कड़वाहट से भरे रहते हो, ठीक है। आपके फादर को हार्ट अटैक 60 में आया था, आपको 30 में आ जाएगा, 28 में, 25 में आ जाएगा, अगर आपने वही चीज जो टेंशन पिताजी को 50 में होनी शुरू हुई थी, आपको 20 में होनी शुरू हो गई, तो आपका वो हार्ट अटैक पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जीन्स आपके जागृत हो गए, और जीन के साथ फिर क्या चाहिए, ये तो जीन हो गए, अब जीन कैसे हैं, जीन जो होते हैं हमारे, जीन जैसे बीज के माफिक होते हैं, बीज समझते हैं, जैसे आपका कोई बीज है, कोई भी चीज़, गेहूं है जैसे, या मूंग की दाल है, हाँ, मूंग साबुत मूंग है, आप वर्तमान में डाल के रख दो, कभी उसका पेड़ बनेगा, बनेगा, वर्तमान में रखा है ना, कोई उसका पेड़ नहीं बनेगा, किंतु तो उसको आप क्या करो, उसको बीज को निकाल के आप जमीन में डाल दो, जमीन में डाल दिया तो क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा, फिर उसका धरती चाहिए, पहले धरती चाहिए उसको, जीन को धरती चाहिए, और फिर उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी पेड़ बनता जाएगा। अब धरती, जीन के लिए धरती कौन सी है, जीन के लिए धरती है नेगेटिव मन, नेगेटिव टीम, आप सारा दिन आपकी टीम अगर नेगेटिव रहती है, विचार नेगेटिव चलते हैं, भावनाएं नेगेटिव हैं, आपका वृत्ति नेगेटिव है, आपकी स्मृतियाँ नेगेटिव हैं, आपकी आस्थाएँ नेगेटिव हैं, है ना, तो क्या होगा, ये जीन जागृत हो जाएंगे, बीज अंकुरित होने लगेगा, राइट, और बीज अंकुरित होगा, फिर उसको धरती, उसको क्या चाहिए, हाँ, पानी कौन सा चाहिए, ये गलत खान पान, ये पानी है, गलत खान पान क्या है, पराठा पकोड़ा समोसा नॉन वेज खाना, फास्ट फूड्स खाना, जंक फूड्स खाना, है ना, चीनी खाना, गुड़ शक्कर खाना, जितने भी चीनी गुड़ शक्कर खाते हो सारी सारी बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अपने खाने में हम चीनी गुड़ शक्कर देते नहीं आपको, समझ रहे हैं? तो ये हमको ध्यान रखने का है। तो फिर जो है जब हम ये खत्म करेंगे हेरिडिटरी बैकग्राउंड हमारी, तो जीन जागृत हुआ और एनवायरमेंटल फैक्टर यही है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? मन है जीन को जगाने वाला, नेगेटिव मन। अगर आपकी टीम पॉजिटिव रहती है हमेशा से, आप बचपन से अनुभव करना शुरू कर दो ए बी सी डी ज्ञान सीख लो, तो क्या होगा, आपको कभी जीन जागृत, भले माता पिता को जीन्स थे, माता पिता को जीन 50 में आए, आपको 80 तक नहीं आएंगे, जागृत नहीं होंगे, बीमारी पैदा ही नहीं होगी, समझ रहे? और आखिर जीन की भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत टेंशन में रहते हो, डेडलाइंस में रहते हो, वर्क स्ट्रेस है, जॉब स्ट्रेस रहती है, तो आप जीन बना सकते हो। आप कुछ भी गलत करते हो, चाय पीते, कॉफी, राहुल निश्चित बताया पहले दिन बताया था, आपका डीएनए टूटता है ना, डीएनए टूट जाता है, उसके हेलिकल्स टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगता है। आजकल बहुत इस पर काम हो रहा है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पे बहुत काम हो रहा है, ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना डीएनए का, तो आरएनए बनता है और उससे फिर आगे जाके प्रोटीन्स बनते हैं, उस पर बहुत काम हो रहा है। और बताया कि एक कप चाय पियो आप, उसके पहले करा लो, उसके बाद ट्रांसक्रिप्टोमिक्स करा लो, अपना ट्रांसक्रिप्टेज करा लो, तो डिफरेंस आएगा, दिखाई देगा कि हाँ ये परिवर्तन, एक कप चाय पीने से हो गया ये। एक बार गुस्सा करके आप पहले करा लो, फिर गुस्सा कर लो, फिर देखो थोड़ी देर में ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, फिर करा के देखो, जैसे सीटी स्कैन कराते हैं ना, ऐसे ही आप ट्रांसक्रिप्टोमिक्स करा सकते हो अपनी। अभी अभी रिसर्च लेवल पे है, पर अभी लोगों पे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, विचारों का क्या प्रभाव होता है, टेंशन का, भावनाओं का क्या प्रभाव होता है, परिवर्तन हो जाती है, खान पान का क्या प्रभाव होता है, लाइफ स्टाइल का क्या प्रभाव, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे काम कर रहा है डॉक्टर नरूला है हमारे, है ना, वो इस पे काम कर रहे हैं, यूएस में है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, कॉन्फ्रेंस हमारी WCCPCI में भी आए थे, है ना, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब ये जो काम इस पे ऑलरेडी चल रहा है कि विचारों का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, नींद का प्रभाव, एक दिन आप कम सो जाओ, 4 घंटे सो जाओ, देर से सो, 12-1 बजे सो जाओ और सुबह उठ जाओ, रात को करा लो, सुबह करा के देख लो कितना फर्क आ जाता है। तो आपकी एक एक बात का गलत असर होता है, एक गलत खान पान का, गलत सोच का, गलत बोल का, गलत कर्म का, बीमारी ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ सोच लिया गलत, ऐसे सोच लिया, ऐसे नहीं सोचा, उसका असर हो गया, बाकी नहीं हुआ, हो गया ना। तो ऐसा जब आप करते हो तो आपके जीन्स जागृत हो, वो जीन को क्या मिल गया, पानी मिल गया, गलत खाना खाया ना ऊपर से, फिर गलत हवा। आजकल हम क्या करते हैं, एसी चला देते हैं, इधर से भी खिड़की बंद, इधर से दरवाजा बंद, इधर सब कुछ बंद, हवा, एसी क्या करता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, उसको ठंडा करके वापस देता, चलो जी कार्बन डाइऑक्साइड सूंघते रहो वापस, दोस्त जो 3 जने सो रहे हैं, 2 जने कमरे में सो रहे हैं, दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड आप वापस लेते रहो, तो आपको कैसी हवा मिल रही है, फ्रेश हवा मिल रही है क्या, ऑक्सीजन मिल रही है, नहीं मिल रही ना, पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है, ये हमारा, और हम वॉकिंग करना नहीं चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, जाएंगे जिम में, जाएंगे जिम में, जिम क्या करता है, वहाँ पे 4 AC लगे हुए हैं, 15-20 लोग ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कमरा छोटा सा है ना, उसमें 2 AC लगे हुए हैं और वो 20 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एसी ठंडा करके वापस दे रहा है, तो क्या ले रहे हैं, वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बीमार होंगे या ठीक होंगे, ये अकल है आज के लोगों की, बाहर लिखते हैं एयर एसी एयर कंडीशन जिम, जिसको मरना हो जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ, शाम को लोग जाते हैं जिम में, थके हुए जाते हैं ऑफिस से, नौकरी से, फिर शाम को जिम में जाते हैं, तो पता आजकल कैसा वातावरण बन गया, नहीं तो अब बीमार होने का जल्दी, हार्ट अटैक जो 5 साल में आ रहा था एक ही महीने में आ जाता है, एडवांस हो जाता, नहीं हो जाता, सुनते हो ना, खबरें सुनते हो ना अखबार में, टीवी पे कोई कभी दिखाई देता है ना कि हाँ वो फला जिम में वो आदमी एक्सरसाइज करते करते लड़का 25 साल का वहीं मर गया, हार्ट अटैक हुआ वहीं मर गया, कलेप्स हो गया, क्यों हो रहा है ऐसे, इसलिए हो रहा है। फिर आजकल हाँ कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता लोगों का, खाते हैं पराठे पकौड़े समोसे मैदा की बनी चीज़ें, है ना, तो क्या होता है, सारे आंतें जम जाती हैं, जम जाती है तो क्या होगा, फिर अंदर सारी गैसेस बनती हैं, मीथेन और ना जाने कौन कौन सी, अमोनिया सारी बॉडी में फैलती रहती है। तो पोल्यूशन बाहर का तो छोड़ो, आप अंदर ही पोल्यूशन इतना कर लेते हो ना, पोल्यूशन बनाने की फैक्ट्री बना रखी है अपने अंदर नहीं? जो चीजें मुंह को स्वाद लगती है पेट को स्वाद ही नहीं लगती है, ठीक है, सुना आपने? ऐसे नहीं हमारा खाना कोई बेस्वाद है क्या, हम जो खाना खाते हैं बेस्वाद है क्या, ठीक है ना, खा सकते हैं ना, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, और धीरे धीरे टेस्ट पर डेवलप हो जाएंगे ना, फिर हमारे दिल वाले खा रहे हैं ना, सालों से खा रहे हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से खा रहे हैं ना, तो परेशान है क्या, परेशान नहीं है, बहुत खुशी से खाते हैं, मैं खा रहा हूँ 21 साल से, तो 22 साल से तो मैं खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि गुलाब जामुन देखते हैं, कुछ देखते रहे, LDL का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा अंदर जाके जम जाएगा, ऐसी जगह जमेगा 2-3 लाख रुपए लगेंगे, तकलीफ अलग होगी, है ना। अब हमारी आर्टरीज तो इलास्टिक होती है ना, हार्ट की आर्टरी इलास्टिक है, 6 गुना सप्लाई बढ़ सकती है। अब स्टेंट लगाने के बाद सप्लाई बढ़ेगी क्या, वो तो फिक्स है ना, बढ़ेगी नहीं सप्लाई, कितना ही आप कुछ करो तो सप्लाई बढ़ेगी क्या, वो तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ ब्लड ही जा सकता है उसके अंदर से। एक्चुअली हमारे हार्ट की आर्टरीज तो इतनी बढ़िया है कि इलास्टिक इतनी, 6 गुना सप्लाई बढ़ जाए डिमांड बढ़ने पर, आपने एक स्टेंट लगा दिया रास्ते में, वो ब्लॉक हो गया, एक्चुअली वो खुला नहीं है और ये ब्लॉक कर लिया, अगर आप ऐसे खोलोगे तो आपकी आर्टरीज वापस इलास्टिक हो जाएंगी, 6 गुना सप्लाई दे सकेंगी आपकी बॉडी इन टाइम्स ऑफ डिमांड। जगदीश भाई ने पहले दिन बताया ना, वो गब्बर चढ़ गया, गब्बर ना कितनी, 2000 स्टेप, 1970 स्टेप्स 1.25 घंटे में चढ़ गया, उसका उसके साथ 25 साल का लड़का थक गया, कहता पापा बैठ जाओ, मैंने और नहीं चला जाता, वो कहता चढ़ो चढ़ो चढ़ो, तो कहाँ से वो एनर्जी आ गई? तो स्टेंट लगाने वाले को इतनी एनर्जी आ सकती है? आ ही नहीं सकती। उसने अपनी आर्टरीज ब्लॉक खोल ली, ओरिजिनल आर्टरीज वापस प्लास्टिक की वजह इलास्टिक हो गई, अब खूब डांस करता है, खूब काम करता है, दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, ठीक है, क्या ख्याल है, स्टेंट लगवाना है क्या, बाईपास करना, भले करा लो बाईपास, एंजियोप्लास्टी करा लो, अच्छी बात है करा लो, आपके भी आपकी जेब भी हल्की हो जाएगी थोड़ी, है ना, आप भी थोड़े खुश हो जाओगे, फिर आ जाना। तो शिव बाबा आपके लिए गीत गाता है, फिल्म का गीत है वैसे तो, आपने सुना भी होगा, कौन सा गीत है, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़फता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं, नहीं? तो भगवान आत्माओं कहते हैं शिव बाबा, कोई बात तुम कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, बाईपास कराओ, थक जाओ जब, सब तरफ से हार जाओ, तब मेरे पास आना, है ना, तब मैं देखूंगा, ठीक है, नहीं, किसी को कराना तो करा लो, मैं मना नहीं करता किसी को भी, भले कराओ, बाईपास कराओ, हनुमान जी बनो, कुछ मर्जी बनो, ठीक है, बाईपास में ना हनुमान जी बनो। हमारे यहाँ हम क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ गणेश बनाया जाता है, हम सिर निकाल देते हैं, सिर निकाल के हाथी का सिर लगा देते हैं, ठीक है, तो गणपति बन जाते हैं, सिर बदल देते हैं ना हम, आपका सोच ही बदल देते हैं, सारा सॉफ्टवेयर बदल देते हैं ना, सॉफ्टवेयर बदल रहे नहीं बदल रहे, आपका सिर बदल रहा नहीं बदल रहा, बदल रहा सिर, आपके सॉफ्टवेयर भी सारा चेंज कर रहे हैं ना, तो आपका सिर बदलता जा रहा है, तो ये आपका जब ये इससे क्या होता है, आप जीन्स आपके जो है ना, आपकी नींद भी इम्पॉर्टेंट है ना, नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर नींद होनी ज़रूरी है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी जो बताया मैंने आपको, भोजन, सैर, कैसे रहते हो, मतलब व्यवहार, आहार और विहार, आयुर्वेद में ना व्यवहार हमारा कैसा है, अपने साथ हमारा व्यवहार कैसा है, दूसरों से हमारा व्यवहार कैसा है, उसमें प्रैक्टिकली चेंज लाना पड़ेगा, तब गलत किया है अपने व्यवहार, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, तो बीमारी आई है। आहार अपने 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 आप अब जो आहार आपने गलत खाया है, खाली हमारी बॉडी का व्यवहार आहार नहीं, मन का भी आहार है, विचार मन का आहार है, आत्मा का भी आहार है। आत्मा का आहार क्या है, शांति, प्यार, खुशी, परमात्मा से लो वो आहार, लो शांति, प्यार, खुशी, आत्मा शक्तिशाली होगी। मन का आहार क्या है, पॉजिटिव विचार, ये मुरली, तो मन शक्तिशाली होगा, ठीक है। शरीर का आहार जो लेते हैं वो भी सात्विक डाइट खाओ, शुद्ध सात्विक डाइट खाओ, सात्विक में 7 गुणों को बढ़ाने वाली डाइट खाओ, फल, सब्जियां, अंकुरित, दलिया, सलाद ज्यादा मात्रा में खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, तो इससे क्या होगा आपका, ये सातों गुणों को बढ़ाने वाला। दूध पियो, बड़े हम मलाई निकाल देते हैं, डी फैटेड मिल्क होता है ना, फिर आर्टरी खुल जाएगी, फिर आपको मक्खन भी खिलाएंगे, पहले आर्टरी खोल के दिखाओ, ठीक है, राइट, मन को बदल के दिखाओ, अभी नहीं, अभी तो पहले ही बहुत है अंदर, फिर निकाल लेना, फिर आपको खिलाएंगे, ठीक है, मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, सुना आपने। तो आहार और विहार, विहार माना जहाँ रहते हो उसको भी ठीक करो, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बाथरूम में प्रॉपर एग्जॉस्ट लगा हो, बाथरूम में पंखा लगा हो ना ठीक ढंग से, और कुंडी लगा के मत नहाओ, है ना, कुंडी कभी कुंडी मत लगाओ, हमेशा ऐसे दरवाजे को ऐसे झाँप दो ताकि कभी बाई चांस आपको मदद की आवश्यकता है तो हमेशा आपको अंदर मदद मिल सके। कभी भी हार्ट पेशेंट को, वैसे नॉर्मली भी अगर आप घर में दो चार एक जने अकेले रहते हो, पता है एक बार सिग्नल लगा दो कि हाँ अंदर इन, है ना, बाथरूम इज बिजी, है ना, तो बस इतना ही बहुत है ना, कोई अंदर कौन आता है, कोई भी नहीं आएगा, तो आप इस तरह से अपने अंदर इन और आउट, है ना, क्या बोलते हैं, वैकेंट होता ना इसमें, होता ना प्लेन में होता ना वैकेंट और ऑक्यूपाइड, ना, तो आप बना दो, एक दो बना दो, एक दो ऑक्यूपाइड बना, आप अंदर जाओ तो ऑक्यूपाइड का लगा के जाओ, और वैकेंट का तो वैकेंट है ही, ऐसे ऐसे खिसकाने वाला भी लग जाता है ना, खिसकाने देते हैं ऐसे ना अंदर ही अंदर, तो बना दो। कई बार ये प्रॉब्लम होती है हार्ट पेशेंट्स को स्पेशली, इसे कभी अंदर से कुंडी मत लगाओ, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, है ना। तो ये नींद भी बहुत जरूरी, नींद भी हमारे विहार में आती है ना, संग भी विहार में आती है, कैसे लोगों का संग करते हो, कैसे कैसा आपका संग है, अच्छे लोगों का संग करो, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, सत्य मान सत्य तो एक शिव बाबा और एक उसकी मुरली है, संग करो, तो ऐसा अपने अंदर परिवर्तन करो, तो आपका जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी ब्लॉक बढ़ने लगता है, स्टेबल प्लाक है ना, ये बढ़ने लगता है, इससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है, कोरोनरी स्पैज़म, एलडीएल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कम, और क्लॉट बनने लगते हैं, और इससे प्लाक बनने लगते हैं, ठीक है, और जब हमारे पास जब पेशेंट रहता है वो इस फेज में आता है, ऑर्गेनिक फेज में, हमारे पास पेशेंट लास्ट में पहुंचता है, ऑर्गेनिक फेज में पहुंचता है, लीजन इन द टारगेट ऑर्गन प्लस ऑटोइम्यून फिनोमेना, जो 5-HT हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे अंदर ऑटोइम्यून फिनोमेना और दूसरे हमारे कुछ और भी केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे ऑटोइम्यून फिनोमेना को ट्रिगर कर देते हैं, मतलब हमारी सेल्स हमारे खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनने लगती है, हमारा शरीर हमारे ही शरीर को विदेशी समझने लगता है, पराया समझने लगता है, इन्हीं सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, तो लड़ाई होती है यहाँ पर, अंदर लड़ाई होती है, इस कोलेस्ट्रॉल खाने के लिए मैक्रोफेज आती हैं, वो खा जाती हैं इनको, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर लड़ाई होती है, और लड़ाई होकर यहाँ पर और तेज़ी से, या फिर ये प्लाक फट जाता है, ये कैप पतली हो जाती है और ये प्लाक फट जाता है, गुस्सा करते हो, चिंता करते हो, प्लाक फट जाता है, और फटने से यहाँ पर खून जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, फिर हार्ट अटैक, कुछ हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है, इस तरह से क्या होता है, लीजन इन द टारगेट ऑर्गन प्लस ऑटोइम्यून फिनोमेना, साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमेटिक फिनोमेना सबसाइड ग्रेजुअली, तो साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक, पहली बार नहीं कराया था जब आए थे, सेकंड टाइम वाले, पहली बार नहीं बताया था ना आपको, सेकंड टाइम वाला आप पहली बार बता रहे हैं ना, तो ये साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक, अभी वो सब बदल गया, सिचुएशन थी, घर में टेंशन थी, सब कुछ सेटल हो गया, है ना, घर में जो टेंशन थी, प्रॉब्लम थी, बॉस था, घर में टेंशन थी, पैसे की प्रॉब्लम, जो भी था समस्या थी, वो ठीक हो गई, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, एज द डिजीज फुल्ली, और अब आप इस बीच में डिजीज पूरी हमारी बॉडी में सेटल डाउन हो गई, बढ़ गई है, कहते अब तो सब कुछ ठीक है, हाँ प्रॉब्लम पे पीछे थी ना डॉक्टर साहब, 10-15 साल तो बहुत प्रॉब्लम में रहे, तो अभी तो सब कुछ ठीक है ना, घर में सब बढ़िया, कमाई भी अच्छी है, घर में कार भी है, बड़ा बैंक बैलेंस भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मस्ती है एकदम से, पता नहीं हार्ट अटैक कैसे आ गया, बैठे बैठे आ गया, सोते सोते आ गया, खाना खा के बैठा था हार्ट अटैक आ गया, तो कैसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है, नाउ रियल पैथोजेनेसिस इज मिस्ड, हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास गए, उसने क्या किया, एंजियोग्राफी की, और आपको बताया कि आपकी आर्टरी 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक है, इसकी जल्दी से एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, अब कारण तो क्या है उसका, वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द अर्लियर बैकग्राउंड ऑफ दिस पेशेंट, उनका अर्लियर बैकग्राउंड कैसी है, उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है ना, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको पता किया ना पहले दिन ही, कितनी जल्दी, कितनी चिंता, कितना गुस्सा, कितना उदासी आपके अंदर है, आपका जीवन शैली कैसी है, आपकी नेचर सेंसिटिव है, इमोशनल कैसी नेचर है, वो सारा हमने पता किया पहले दिन, अब फिर करेंगे, परसों फिर करेंगे सारी, चेक करके आपको बताएंगे ना कि अब कैसी है, छः दिन के बाद कैसी रही, क्या परिवर्तन उसमें हुआ, आपका लिपिड प्रोफाइल में क्या चेंज हुआ, आपके शुगर में कितना परिवर्तन हुआ, वो दोबारा चेक होगा है ना, छठे दिन फिर चेक होगा, तो सामने दिखाई देगा ना हमको, आपको भी दिखाई देगा हमें क्या परिवर्तन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द अर्ली बैकग्राउंड एंड ओवरकम इन द अर्ली स्टेज, और बीमारी को जल्दी पकड़ लो। इसलिए हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को स्कूल कॉलेज में लेके जा रहे हैं, है ना, स्कूल कॉलेज के बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्कूलों में हमें ये प्रोग्राम चला रहे हैं अभी ना, लोगों को, बच्चों को प्रिवेंशन, ताकि भविष्य में इनका ना अपना ब्लड प्रेशर हो, ना डायबिटीज़ हो, ना हार्ट की बीमारी हो, ना मोटापा बढ़े, है ना, क्योंकि पहले से खान पान की आदतें ठीक हो जाएंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाएंगे और शुरू से ABCD जान जाएंगे तो क्या करेंगे, जल्दी चिंता गुस्सा अपने आप कम हो जाएगी ना, है ना, तो अपने अंदर परिवर्तन आता जाएगा। तो इस तरह से हम उसको करते हैं। और ये मैंने बताया कैसे नेगेटिव विचार से हमारे हाइपोथैलेमस में न्यूरोपेप्टाइड पैदा होते हैं, हर विचार के लिए, हर भावना के लिए, और गुस्से के लिए अलग, चिंता के लिए अलग, उदासी के लिए अलग, उनकी अलग डिग्री होती है गुस्से की भी, उनकी अलग डिग्री के लिए अलग टाइप के केमिकल्स पैदा होते हैं। गुस्से के बहुत सारे प्रकार होते हैं, चिंताओं के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनके अलग अलग केमिकल पैदा होते हैं, और वो जल्दीबाजी के अलग प्रकार होते हैं, और उससे लाल तार एक्टिव होती है और स्ट्रेस हार्मोन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल निकलना शुरू होता है, उससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फीलिंग ऑफ डिसईज, सैडनेस, लैक ऑफ एनर्जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप मान लीजिए आपको आपको हर साल आपका चेकअप होता है, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है ना, हर साल होता है, स्पेशली कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं उनका चेकअप होता है। लास्ट ईयर TMT किया था, नॉर्मल था, नेगेटिव था, इस साल किया तो पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर ने कहा आपका TMT पॉजिटिव आ गया, लगता है आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, सब कुछ फ्री होता है, डॉक्टर साहब कर दो, पैसे लगे तो कहेंगे नहीं नहीं करो, तो अभी तो फ्री में कर लो, तो एंजियोग्राफी हो गई, अभी तक तकलीफ कोई नहीं हुई है, डॉक्टर ने शाम को एंजियोग्राफी कहा कर दिया और सुबह कहा कि सुबह भाई सुबह सुबह रिपोर्ट ले जाना। उसने डॉक्टर साहब मैं स्पोर्ट्स क्लब से आता हूँ लेके जाऊँ तब 7 बजे आ जाऊँ क्या, 7:30 आऊँ? उसने कहा भले आओ, मैं तो शुरू में 7 से 9 पेशेंट देखता हूँ, उसके बाद मैं कैथ लैब में चला जाता हूँ, है ना। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बैठा हुआ है, आप शॉर्ट्स में हैं अपने, ये भाई साहब सुन रहे हैं, तो शॉर्ट्स में है ना आप अपने आप, और हाथ में रैकेट है बैडमिंटन का, पसीना पसीना हो रहे हैं, है ना, कहते डॉक्टर साहब जल्दी से दे दो मेरी रिपोर्ट। अरे भाई आप बैठ जाओ, एक मिनट बैठो, देखो ये आपकी रिपोर्ट है, एक आर्टरी 100% बंद है, एक 90%, एक 80% बंद है। कहते डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट मेरी हो ही नहीं सकती, आज तक कोई छाती में दर्द हुआ ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं है मुझे, ये किसी और की रिपोर्ट होगी, देखो आपका ही नाम है, शाम को मैं बोल रहा था आपकी लगता है आर्टरी बंद है, पर डिटेल में देख के बाद में बताऊंगा, ये आप ही की रिपोर्ट है, आपका ही नाम है, देखो ना आपकी CD है, आपका DVD है, नहीं तो उसको मतलब वो मानता नहीं है। फिर भी फिर धीरे धीरे उसको एक विचार आता है, हाँ मेरी आर्टरी ब्लॉक है, 100% बंद है, ये बंद है, तो उसके विचार आने लगता है, फिर उसको उसको कहता है अच्छा याद है तुम्हें हफ्ता पहले ही आपके था ना फला मिस्टर सो एंड सो डेथ हुई ना उनकी, हाँ हुई तो सही, हाँ अच्छा वो उसको यही हुआ था, आर्टरी बंद थी, मैंने कहा बाईपास करा ले, कराई नहीं ना, देखो गया ना ऊपर, अच्छा अभी क्या हुआ, अब उसके कौन से विचार जागृत हो गए, है ना, मेमोरी जागृत हुई ना, उसकी स्मृति दिला दी कि तुम्हारे यहाँ डेथ हुई ना, उसकी ऐसे हुई, फिर अच्छा तुम्हारी कोई बच्चे हैं, हाँ बच्चे तो हैं, डॉक्टर्स के ट्रिक्स होते हैं ना, है ना, वो आपको बता रहा हूँ, कितने बच्चे हैं, 2, एक डॉक्टर ही पढ़ रहा है, कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही लड़की, बेंगलोर में कर रही है, अच्छा जिम्मेवारी बाकी है, तो भावना भी जागृत हो गई, अब क्या होने लगता है, उसके ये जो निरपेप्टाइड बनने लगते हैं विचार, है? तुम्हें बाईपास कराना पड़ेगा, या तो दो स्टेंट लगवा लो, या तो फिर बाईपास करा लो, 100% में तो लगेगा नहीं कि, तो 80% और 90% को हम ठीक कर देंगे, आज ही कर देता हूँ, दाखिल हो जाओ। अब उसको ये निरपेप्टाइड बनने लगे और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगे और लाल तार एक्टिव हो गई, जो थोड़े कोलेट्रल्स थे ना जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो चल रहा था, वो खेल भी पा रहा था, चल भी पा रहा था, तकलीफ नहीं थी, वो बंद हो गई, खून गाढ़ा हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, BP बढ़ गया, खून जमने लगा और उसको छाती में दर्द होने लगा, अभी यहाँ छाती भारी भारी लगी, अभी तक कभी नहीं हुई थी, अब उसको डॉक्टर साहब थोड़ा छाती भारी लग रही है, लेट जाऊँ क्या, अभी तो जाने की जल्दी कर रहा था ना, अब उसको छाती में दर्द होना रियल में शुरू हो गया, और लेट जाता है, और फिर उसको कहता है मेरी वाइफ को जरा फ़ोन कर दो, मेरी तबीयत ठीक है, बता दो उनको, खुद फोन भी नहीं करता है। तो ऐसे हमारे अंदर रोज की रोज ऐसा ऐसा होते होते रोज की हमारी आदत पड़ जाती है, और जो 8 ऑर्गन्स हैं उसमें से जो ऑर्गन जन्म से कमज़ोर है उसमें गठी है। जैसे अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपका गठिया की बीमारी, SLE हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे, बार बार जुकाम खांसी होता रहेगा, इन्फेक्शन कभी यूरिन इन्फेक्शन, कभी कहीं यहाँ से यहाँ ब्रेन में, तो यहाँ साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होती रहेंगी, यहाँ पे अस्थमा की बीमारी हो जाएगी लंग्स में अगर है तो, एलर्जी हो जाएगी आपको इधर है तो, आपकी आर्टरीज जल्दी जल्दी ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी अगर है तो, पेट में अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा, एंडोक्रीन सिस्टम है तो आपकी डायबिटीज़ हो जाएगी, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म, या जल्दी बूढ़े हो जाओगे है ना, और फिर या फिर आपकी हड्डियों की तकलीफ, जॉइंट की प्रॉब्लम्स होने शुरू, या फिर किडनी खराब होना शुरू, जो भी अंग जन्म से कमज़ोर बना वो आपके अंग खराब होंगे, इस तरह से हमें बीमारियाँ पैदा होती। समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? टाइम तो हो गया, चलो मैं अभी थोड़ा सा पूरा कर। हार्ट प्रॉब्लम किनको होती है? ये एक लुईस हे की किताब से लिया हुआ है। हार्ट प्रॉब्लम किसको होती है? कौन से नेगेटिव टीम हमारे अंदर हो तो, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, लंबे समय से अपनी भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे, हार्ट की प्रॉब्लम उनको होती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। अगर आप चाहते हैं आपकी ब्लॉकेज खुल जाए, हर रोज की भावना को हर रोज व्यक्त कर दो, बाबा को रोज लेटर लिख के, जैसे कल लेटर लिखा ना, रोज सोने के बाद लेटर लिखो सच्चाई से, आपकी आपके मन में तन में कुछ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी विचार आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं, वो लिख दो। आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, हार्ट में शुगर ऊपर नीचे हो रही है, लिखो बाबा मेरी आज शुगर ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा हो रहा है, मेरे को ऐसे करने को दिल कर रहा है, ऐसा हो रहा है, जो भी मन में सारी बात बता दो, राइट। फिर परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, परिवार के अंदर टेंशन है, वो भी बाबा को बताओ। फिर और क्या बताना है बाबा को? फिर आपके प्रोफेशनल लेवल पर आपका धंधा है, बिजनेस है, कुछ भी काम करते हो, वो भी वहाँ टेंशन है कुछ, वो लिखो बाबा को। टीम के लेवल पर विचार, भावना, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, वायुमंडल और स्मृति के आधार पे, संस्कारों के आधार पे, बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध, संपर्क में जो भी कुछ टेंशन है, हर बात बाबा को लिखो, रोज की रोज, रोज की रोज वेंटिलेट आउट करो, तो आप देखेंगे आपका परिवर्तन हो जाए। करना है कि नहीं करना है? करना है तो आपका परिवर्तन तब होगा। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम मेन कॉज ये वाला है आपका। हार्ट के पेशेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि अपनी भावनाओं कह ही नहीं पाते, आपस में शेयर ही नहीं कर पाते, आजकल सुनने वाला कोई है नहीं, टाइम किसी के पास है नहीं, है ना, तो इसलिए अपनी मन की भावनाओं को, परमात्मा खाली बैठा है, कुछ काम ही नहीं है उसको, ऐसा सोचता है ना, तो खाली बैठा है आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब भी मिलने जाओ खाली मिलता है, कोई भीड़ नहीं होती उसके पास, होती क्या भीड़? हम ऊपर जाते हैं ना बाबा के पास, खाली बैठा होता, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, है ना, तो हमेशा खाली मिलेगा आपको। जैसे हर गोपी के साथ कृष्ण दिखाते हैं ना, है तो कृष्ण एक, कि तो ऐसा ही बाबा के साथ, जो जो ऊपर होता है ना, ऊपर और पावरफुल होता है ना, हाईएस्ट होता है, जैसे आज सूरज है, सूरज यहाँ पर है, मैं कार लेके जा रहा हूँ इधर से इधर को, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मेरे साथ साथ चल रहा है एक आदमी चेन्नई, मेरा दोस्त है, वो भी कार चला रहा है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अब उसको लग रहा है सूरज मेरे साथ जा रहा है, मेरे को लग रहा है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो किसके साथ जा रहा है वो सूरज? उसको भी अनुभव हो रहा है मेरे साथ भी जा रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे साथ जा रहा है, एक एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसको भी अनुभव हो रहा है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसको भी अनुभव हो रहा है, तो ऐसा ही परमात्मा के साथ हमें अनुभव होता है, राइट। सरेक को ऐसा लगता है बाबा मेरे लिए है, सिर्फ मेरे को ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, सच्चाई से करो तो फील होता है कि बाबा मुझे कितना, मुझे हर बात मुझे शेयर करता, मुझे ऐसा साथी मिला है, ऐसा दोस्त मिला है जो सदा मेरे साथ है, क्या ख्याल है डॉक्टर मनोज, ख्याल है कि नहीं ख्याल है? सोनी जी, साथी मिला ऐसा नहीं मिला? प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाओ, बन के दिखाओ, करेंगे कि नहीं करना है? मंगला जी, वीरेंद्र सिंह, ऐसे बनो, चेहरा चेहरे से दिखाई दे, हाँ ये को कुछ मिला हुआ है, प्रैक्टिकली बने, तो ऐसा प्रैक्टिकल बन के दिखाओ। लैक ऑफ जॉय, हार्डनिंग ऑफ हार्ट, बिलीफ इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आदत ही पड़ गई चिंता में गुस्सा। आज चिंता गुस्सा नहीं है, टेंशन नहीं है, कुछ लगता खाली खाली लग रहा है, कुछ तो टेंशन होनी चाहिए ना। तो बिलीफ हो गया है, विश्वास हो गया जीवन में कि मुझे ही टेंशन में रहना है सारी उम्र, है ना। इसका इलाज क्या, जॉय जॉय जॉय, खुशी खुशी खुशी, खुश रहो, हमेशा ही खुश रहो। आई लविंगली अलाउ जॉय टू फ्लो थ्रू माई हार्ट एंड एक्सपीरियंसेस, अपने हार्ट से और अपने अनुभवों से कि आप क्या बहने दो, प्यार और खुशी बहने दो। नेगेटिव बात को टालते जाओ, कोई नेगेटिव बात आ रही नहीं, क्रोध आ रहा है नहीं, कल कर लेंगे ना, अभी छोड़ दो ना, एक दिन तो ठंडा होने, ठंडा होने दो, अच्छा फिर अगले दिन, फिर अगले दिन कर लेंगे, कोई बात टाल दो, अच्छी बात तुरंत कर दो, बुरी बात को टाल। हार्ट अटैक कब होता है, स्क्वीजिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हार्ट इन फेवर ऑफ मनी और पोजीशन। बेटी की शादी हो जाए फिर करता हूँ, ये काम हो जाए मेरी प्रोफेशन हो जाए फिर करता हूँ, फिर रोज वॉकिंग किया करूंगा, ऐसा हो जाए ना फिर रोज मैं ऐसे करूंगा, रोज 4 बजे उठूंगा, फिर रोज मुरली जाऊंगा, है ना। और जिस दिन वो काम होगा ना उस दिन हार्ट अटैक आएगा आपको, ठीक, या काम पूरा होते ही हार्ट अटैक आएगा। ये रेगुलर करने की चीज़ है। ये कभी ऐसे बोलते हो मैं सांस जरा, ये काम पूरा हो जाए ना फिर सांस तब लेता हूँ, है ना, अभी सांस वांस कुछ नहीं लेता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, रोज पानी पीते हो, रोज खाना खाते हो ना। तो डेली ऐसे एक्टिविटीज, सांस रोज लेते हैं, ऐसे ही आपको हर चीज़ रोज करनी है, करनी कि नहीं करनी है, करनी है। तो ये जो है, आई ब्रिंग लव जॉय बैक टू सेंटर ऑफ माई हार्ट, ये जो नया लाइफ स्टाइल है इसको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना दो, अपने जीवन के साथ जीना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, तो आप इसको जीवन का पहले काम ये वाला, फिर बाकी काम बाद में, नौकरी बाद में, लोगों से मिलना जुलना बाद में, वो बाकी बाद में। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो सचमुच, तो अपनी घड़ी के अनुसार चलो, घड़ी को अपने हिसाब से मत चलाओ, अपने काम के प्रेशर के अनुसार मत चलाओ। अभी हम इस घड़ी को भी अपने प्रेशर के अनुसार चलाते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, वो नहीं करो। डायबिटीज़ किसको होती है, लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, ए ग्रेट नीड टू कंट्रोल, डीप सॉरो, अंदर बहुत गहरी चोट लगी हुई है, नो स्वीटनेस लेफ्ट इन लाइफ, कड़वाहट भर गई है, कड़वाहट भरेगी तो कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, लीवर से ज़्यादा ग्लूकोज बाहर निकलेगा, लीवर से ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा निकलेगा तो आपका इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा पेनक्रियाज से, और फिर क्योंकि स्ट्रेस तो लगातार रहने वाली चीज़ है, और फिर स्ट्रेस बढ़े लगेगी, शुगर यहाँ से निकलता रहेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन निकल के यहाँ फैटी लीवर बनता जाएगा, है ना, फैटी लीवर बनता जाएगा, फैट जब फैट बॉडी यूज़ करना शुरू कर देगी लीवर, और धीरे धीरे शुगर भी ज़्यादा बढ़ी रहेगी और इंसुलिन बढ़ा रहेगा, ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल ज़्यादा होंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, एचडीएल कम हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो तीन प्रॉब्लम होगी ना, और भूख ज़्यादा लगेगी, इंसुलिन ज़्यादा होगी भूख ज़्यादा लगेगी, चबाने को दिल नहीं करेगा खाना, चबाने को आपको खाना दबाने को दिल करेगा, जल्दी बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे दिखाया था ना समोसे खाते हुए उसको, खाए वो चबा नहीं रहा है, भरे जा रहा मुँह में समोसा ना, जैसे कोई ओखरी होती ना ओखरी में डालता जा रहा, अरे उसको तू चबा के खाओ तो उसे टेस्ट तो लो उसका, एक ही समोसे में पेट भर जाएगा, 10 समोसे नहीं खाने पड़ेंगे। अगर हम खाना चबा के, हमारे पेट की कैपेसिटी लगभग 300 ml होती है, अगर हम खाना सही ढंग से चबा चबा के खाएं तो 100 ग्राम खाने पेट भर जाता है, 100 ग्राम खाना, 200 ग्राम जूस टाइलिन लार मिल जाती है उसके। अगर हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो 200 ग्राम खाना खा जाते हैं, 100 ग्राम ही जूस मिल पाता है, और भी जल्दी जल्दी खाते हैं। कई लोग तो खाना यूं करते हैं, एक इधर इधर मुँह में डाला नहीं, चबाया नहीं, चबाते नहीं, एक इधर को डाल लेते हैं ना, और फिर बस यूं किया और अंदर धकाया और फिर ऊपर से एक और डाल दिया, खड़े खड़े खाना खाएंगे, 5 मिनट में खाना ख़त्म, कम से कम 40 मिनट सुबह खाना खाने लगने चाहिए, 30 मिनट दोपहर में और 20 मिनट शाम को, कितना टाइम लगना चाहिए, 40, 30 और 20 कितना हो गया, 90 मिनट, कम से कम 1.5 घंटा खाना खाना चाहिए सारे दिन में, है ना। और फल, 2 टाइम फल हुआ, कितना हो गया, 15-15 मिनट, वो उसके आधा घंटा, वो भी कम से 2 घंटा तो खाना खाओ, कम से कम चबा चबा के खाओ ना, दांत यहाँ लगे कि यहाँ लगे हैं, तो इससे ध्यान रखो ना, खाना आपके यहाँ अच्छे से चबाओ। डायबिटीज़ का कारण बहुत यही है, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं तो डायबिटीज़ पैदा होती है, समझ गए। और फिर आई, दिस मोमेंट इज़ फिल्ड विद जॉय, आई नाउ चूज टू एक्सपीरियंस दिस स्वीटनेस ऑफ टुडे, मिठास अनुभव करो जीवन में, हर जगह मिठास है, मीठा बोलो मतलब वो आपसे मीठा व्यवहार करेंगे, लोगों गलतियों को माफ़ करो, आपकी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। हाइपरटेंशन किसको होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, ए वोल्केनो, अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है, बाहर नहीं बोलते हो, अंदर अंदर उबलते रहते हो, मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोहल्स, राई का पहाड़ बनाते रहते हो, है ना। इलाज क्या है? आई लविंगली जॉयसली रिलीज द पास्ट, आई एम एट पीस एंड लव विद ऑल। ठीक है, करेंगे ऐसे। जो टाइम तो हो गया, मैं समझता हूँ, तो अगर जैसे हमारा मन साफ पानी की झील के माफिक है, कोई पत्थर फेंके या कोई बाहर से कभी तूफान आता है ना, अंदर से भी ज्वार भाटा उठता है झील में, वेव्स अराइज एंड स्ट्रॉम फॉलोज, लहरें आती हैं, कंट्रोल नहीं करो तो तूफान बन जाता है। पर्सन हु गिव्स अप इज स्वेप्ट अवे, जो आदमी हिम्मत हार जाता है वो बह जाता है। अगर इस रूप में देखें तो अनप्लेजेंट मेमोरीज और नेगेटिव थाट्स, उससे स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं, लाल तार एक्टिव हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और हमें बीमारी शुरू हो जाती है। इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन आवर एटीट्यूड एंड बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड क्या है उस समस्या के प्रति, हमारा आस्था क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लुएंसेस व्हाट केमिकल मैसेजेस द ब्रेन सेंड्स टू द बॉडी, क्या मैसेज हाइपोथैलेमस से बॉडी में आएगा। अगर मेरा बिलीफ है भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, भगवान मेरा साथ ही है, तो क्या होगा, कुछ भी समस्या आ जाए आपको डर नहीं लगेगा। तो वो केमिकल यहाँ कौन सा बनेगा, एंडोर्फिन्स बनेंगे, लाल तार की बजाय हरी तार एक्टिव हो जाएगी, पैरासिम्पेथिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगी, यू विल फेस द चैलेंज विद रिलैक्स्ड माइंड, राइट। अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रेस सामने से आ रही है, हम पहले डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, है ना। तो फोकस इज नॉट ऑन स्ट्रेस बट हाउ वी कोप विद इट, चूजिंग द रॉन्ग रिएक्शन कॉजेस प्रॉब्लम्स, जब हम गलत रिएक्शन को चूज करते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे जितने भी नेगेटिव है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इंसान का नेचर नहीं है, ये इंसान की ट्रू नेचर नहीं है। जितने भी नेगेटिव विचार हैं, ये इंसान का स्वभाव नहीं है। इंसान का जैसे सागर होता है ना, ये ओशन ऑफ माइंड है, सागर कैसा होता है, लहरें ऊपर होती, नीचे भी लहरें होती हैं, लहरें ऊपर ऊपर होती हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके बाल बच्चे जो 10 बताए मैंने आपको, ये सब लहरों के समान ऊपर ऊपर होते हैं। आप मन रूपी सागर में गहरे जाओ तो अंदर बहुत पवित्रता, बहुत शांति, बहुत प्रेम और खुशी है। सागर के नीचे जाओ ना, हम लोग गए सबमरीन में बैठ के नीचे गए हुए हैं, समुद्र के तल को हम टच किया हुआ है, इतना सुंदर होता है नीचे, एकदम वाइट वाइट होता है, सुंदर सुंदर मछलियाँ तैर रही होती हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ, कोरल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बहुत सुरक्षित जैसा लगता है नीचे ना, कोई मूवमेंट भी नहीं होती है, एकदम बहुत स्टिल होता है, बहुत शांत होता है। ऐसे अगर आप मन के और गहरे जाओगे मन रूपी सागर में, तो आनंद की अनुभूति होगी और तब पता लगेगा मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी सुपरफिशियल नहीं होते हैं, वो हमेशा गहरे होते हैं, वो गहरे गहरे में रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बाह्यमुखी नहीं, बाहर को नहीं देखते हैं, अंदर देखते हैं, हमेशा अपने अंदर देखते हैं और दूसरों के भी अंदर देखते हैं, अपने अंदर भी आत्मा को देखते हैं, दूसरों के अंदर भी आत्मा को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उनको कभी भी जल्दी चिंता गुस्सा नहीं आता, वो सदा शांत रहते हैं, धीरज रखते हैं, प्यार खुशी से भरपूर होते हैं, ये बड़े आदमी की निशानी है। और छोटे आदमी जिसे कहते हैं, या जिसे कहते हैं ये आदमी अकल नहीं है, कम अकल वाला है, वो हमेशा थोड़ी थोड़ी बात गुस्सा करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सूरत इंसान की, शक्ल इंसान की, और सीरत किसकी होती है, आप समझो किसकी होती है, बंदर जैसी ना, बात बातें खो खो करते हैं, खो खो करते हैं ना, हर बात में आंख दिखाते हैं ना, ये इंसान की निशानी नहीं है। और ये है डीपर। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहें, एनी डिजीज कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द मेंटल पैटर्न्स, कोई बीमारी भी आप बदल सकते हो, किस तरह से, आप सोचने का ढंग बदल दो। बीमारी क्यों होती है, नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है आपको, उससे बीमारी हो रही है, डिसईज हो रही है। हेल्दी बनना तो मन की सफाई राजयोग मेडिटेशन से करो, और तन की सफाई डाइट, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज से करो, ठीक है। इनक्योरेबल डिजीज का मतलब क्या है, इसका मतलब एक्चुअली इसका मतलब है इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय आउटर मेथड्स। इनक्योरेबल माने नॉट क्योरेबल, वैसे तो इसका मतलब क्या है, नॉट क्योरेबल, पर जिसने ये वर्ड बनाया था उसमें हिडन मीनिंग छोड़ा था। इनक्योरेबल डज नॉट मीन इट इज नॉट क्योरेबल, इट मीन्स इट इज इन प्लस क्योरेबल, मतलब इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय आउटर मेथड्स, मेडिसिन और सर्जरी टू इफेक्ट हीलिंग और क्योर, इन प्लस क्योरेबल, वी मस्ट गो विद इन आवर ट्रू इनर सेल्फ, बींग और सोल। अंदर जाके देखो मैं कौन हूँ। हीलर वो है, अंदर आत्मा हीलर है, मन को हील करना है और बॉडी को हील करना है। इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग वी हैड नेगेटिव पैटर्न्स और इलनेस और ए रॉटन रिलेशनशिप और सेल्फ हेट्रेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने सालों से हमारे अंदर नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सालों से हमें बीमारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने सालों से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, खुद के प्रति नफरत हो गई, डिप्रेशन हो गया, क्या करो? वी कैन बिगिन टू मेक ए चेंज टूडे, अभी से हम परिवर्तन करना शुरू करें। क्या परिवर्तन करना है? व्हाट वी आर चूजिंग टू थिंक एंड से, सिर्फ सोच बदलनी है। क्या बदलनी है? सोच और बोल बदलने। टुडे दिस मोमेंट, इस घड़ी में हम क्या सोच रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या पास्ट में बीत गया, क्या सोचा, क्या किया, बोला, फर्क नहीं पड़ता है। भविष्य में क्या बोलेंगे, सोचें, उसका फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे हमारा कल बनेगा, परसों बनेगा, तरसों बनेगा, अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल बनेगा। ये वर्तमान में क्या सोच रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? पीछे समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस घड़ी में शक्ति है। कौन सी घड़ी में शक्ति है? ये घड़ी जो अभी वर्तमान की, उसमें शक्ति है। इसी को शांति भी कहते हैं। वी कैन बिगिन टू लेट द ओल्ड नॉनसेंस गो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? नॉनसेंस, कॉमन सेंस, नॉनसेंस कर रहे थे। रोज गुस्सा कर रहे थे, रोज जल्दीबाजी, कुछ मिलता नहीं था और ही धोखा मिलता था और ही काम बिगड़ रहे थे। रोज चिंता कर रहे थे, कुछ उससे काम नहीं सफल हो रहा था। रोज कर रहे थे, रोज बात बात में मूड ऑफ कर रहे थे, रोज में रोके दिखा रहे थे किसी को। ठीक हो रहा था काम? क्या काम बदला? क्या कुछ भी नहीं भी। तो बदलो ना। कॉमन सेंस क्या कहती है? एक से काम नहीं बना, दूसरी चीज ट्राई करो, है ना। और ये देखो, बी विलिंग टू चेंज योर थॉट्स एंड वर्ड्स, वॉच योर लाइफ चेंज। अपने सिर्फ क्या बदलने हैं आपको? अपने विचार बदल दो और अपने शब्द बदल दो, आपका लाइफ बदल जाएगी। द वे टू कंट्रोल योर लाइफ इज टू कंट्रोल योर चॉइस ऑफ थॉट्स एंड वर्ड्स। आपकी इच्छा है कौन से शब्द इस्तेमाल करो, क्या सोचो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। नो वन थिंक्स इन योर माइंड बट यू। आपके मन में कौन बैठा है? आप बैठे हो, कोई और ही है? आत्मा बैठी है, कुछ और भी बैठा है? किसके अंदर भूत वूत तो नहीं बैठा है? किसको भूत बैठा हो तो मुझे बताना, मैं भूत निकालना आता है मेरे को, है ना, है ना? रियली मैं निकाल दूंगा, एक ही मिनट में निकाल दूंगा। किसी के अंदर भी भूत हो तो मुझे बता देना, चुपचाप बता देना, पब्लिक में भले नहीं बताना, एक ही मिनट में निकाल दूंगा। ठीक। कंसिस्टेंट थिंकिंग पैटर्न लीड्स टू एक्सपीरियंसेस, है ना। जो चीजें बार बार सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, उस आदमी को बताया ना, अरे आपकी आर्टरी ब्लॉक है, है ना। फिर बताया, वो देखो आदमी मर गया ना, आपका ऑफिसर मरा ना, फिर उसके बच्चे, बच्चे की जिम्मेवारी बाकी है ना, तो बार बार सोचने को मजबूर किया ना उसको, बार बार सोचने को मजबूर किया ना, तो क्या हुआ? सचमुच में उसकी आर्टरी में क्या हुआ? ब्लॉक तो था ही, कोलेटरल बने थे वो बंद हो गए और आर्टरी में, छाती में दर्द होना शुरू हो गया। अब खड़े होने की ताकत खत्म हो गई, लेट गया। वैसा अनुभव होने लगा ना, जैसा सोच जैसी भावना वैसा हमारा, हमें अनुभव होने लगता है। बाय चेंजिंग अवर थिंकिंग एट पैटर्न्स वी कैन चेंज अवर एक्सपीरियंसेस। सोचने का ढंग बदल दो तो क्या हमारे अनुभव भी बदल जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिव अनुभव हो रहे हैं और उससे हमारी बीमारी पैदा, डिसईज पैदा हो रही है। अब पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, ABCD करना शुरू कर दो, मुरली को जीवन बना लो, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे, ईज होगी, हेल्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो यही है। स्ट्रेस तनाव से क्या होता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल बढ़ता है, उससे हार्ट रेट बढ़ती है, BP बढ़ता है, LDL बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और HDL कम हो जाता है। उससे हमारे हार्ट पर एलोस्टेटिक लोड बढ़ जाता है, हमारी एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलनी बंद हो जाती है और आर्टरी जल्दी जल्दी ब्लॉक होने लगती है। इसकी बजाय आप पॉजिटिव थॉट करना शुरू कर दो, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस के थॉट्स लाना शुरू करो, तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, उससे हार्ट रेट कम होने लगती है, BP कम होने लगता है, LDL कम होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड कम होने लगता है, HDL बढ़ने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और प्लाज्मिन एक्टिविटी, क्लॉट बस्टर निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? बीटा एंडोर्फिन्स निकलने शुरू होते हैं, नेचुरल पेन किलर्स, एंजाइना खत्म, छाती का दर्द खत्म, पैरों का दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, सिर का दर्द खत्म हो जाता है और उससे मेलेटोनिन बढ़ जाता है, नींद अच्छी आने लगती है। मेलेटोनिन हमने देखा है कि हमारा मेलेटोनिन 800% बढ़ गया मेडिटेशन करने के छठे दिन जब हमने चेक किया, इसमें लार में चेक किया, हमने थूक में मतलब स्कूटर में टेस्ट किया, हमने एक एथेटर लगा दिया और वो ड्रिप होता रहा। सारी रात हम चेक करते रहे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, सारी रात के हमने सैंपल टेस्ट किए, उस मेलाटोनिन लेवल देखा तो 800% बढ़ गया था पहले दिन से लेके और दूसरे आखिर छठे दिन 800% राइज, अभी तक का मैक्सिमम है ये। स्टडीज़ में लोगों ने 45% इंक्रीज बताया, ऐसा बताया, 800% बढ़ गया। इतनी बढ़िया नींद आती है ना, इतनी बढ़िया नींद आती है कि उठा के कोई यहाँ से लेके आपको उठा कहीं और रख दे तो भी पता नहीं लगेगा, उठा के कोई ले जाए ना आपको, आपको पता नहीं लगेगा। सुना, घोड़े बेच के सो जाते हैं ना। अच्छा, घोड़ा बेच के क्यों कहा, गधा 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 या कुछ और बकरी बेच के क्यों नहीं बोला? मन को घोड़ा कहते हैं ना, मन के विचार जो तेज चलते हैं ना वो हमें सोने नहीं देते हैं। तो घोड़े बेच दो, सोने के पहले सारे घोड़े बेच के सो जाओ, सारे विचार एक्सप्रेस करके सो जाओ। लेटर लिखना बेसिकली क्या मतलब है, लेटर लिखने से क्या मतलब है, सारे घोड़े बेच दो, ठीक है, भगवान को सारे घोड़े दे दो अपने, सारे विचार दे दो, तो क्या आप नींद आ जाएगी। मैं सोचा करता घोड़े बेचने को क्या कहते हैं रात को सोने के पहले, तो तब बाद में समझ आया घोड़े का मतलब क्या है। ये नेगेटिव विचार घोड़े के समान होते हैं, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं सबकॉन्शियस माइंड घोड़े के समान उस तरह के विचार से भावनाएं होती हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। और फिर जो है ये देख रहे हैं आप, इससे एलास्टोरिक लोड कम हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलने शुरू हो जाती है और हमारी आर्टरीज जल्दी जल्दी खुलने लगती हैं। तो बस यही, जितना मेडिटेशन करोगे उतना क्या होगा, मन क्या होता जाएगा, पॉजिटिव, टीम पॉजिटिव, पॉजिटिव होती जाएगी। जितना ABCD को अनुभव करोगे उतनी टीम आपकी पॉजिटिव होती जाएगी। तो यही आपको करना है। और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल एनर्जी विद इन, आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी उसको जागृत करता है मेडिटेशन, ठीक है, आप उससे आपकी पीसफुल और ब्लिसफुल लाइफ हो जाती है, संतुष्ट लाइफ हो जाती है। ए प्रोसेस ऑफ लीडिंग द माइंड फ्रॉम आउटर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज टू इनर सटल रीजंस फुल ऑफ पीस। आउटर फील्ड क्या है, पीसलेस है, अंदर क्या है, शांति है। इट टेक्स द माइंड टू इट्स ओन सोर्स इनर सेल्फ वेयर लाइज प्योर नॉलेज एंड ब्लिस। मेडिटेशन क्या है, इट इज ए पाथ बिटवीन आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, उसके बीच में क्या है, एक पाथ है, एक ब्रिज है, उससे आप अंदर जा सकते हो। ओके, इट इज ए पाथ बिटवीन इम्परफेक्शन एंड परफेक्शन, बाहर की दुनिया इम्परफेक्ट है, अंदर परफेक्शन है, हर चीज एक्यूरेट है अंदर, राइट। इग्नोरेंस एंड विजडम, बाहर इग्नोरेंस है, अंदर क्या है, विजडम है। इट टेक्स द ह्यूमन बींग फाइनली नियरर टू गॉड, अल्टीमेटली अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। ड्यूरिंग मेडिटेशन बियॉन्ड वन गोज बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोअर ब्रेन सेंटर्स, या रिएक्शन करते हैं हम लोअर लेवल पे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर चले जाते हैं, एक्शन एशिया लगना शुरू हो जाता है। आज का इंसान सूरत इंसान की है कि तू इसके वश में है, इसके वश में है, रिएक्शन कर रहा है, हालांकि क्यों नहीं लगा पा रहा एशिया, एशिया क्यों नहीं लगा पा रहा इंसान होने के बाद भी, कारण क्या है, उसके पास ना ज्ञान है, ना पवित्रता, ना शांति, ना प्रेम, ना सुख, ना आनंद, ना शक्तियाँ। जितना ये ज्ञान बढ़ेगा आपके अंदर, पवित्रता शांति बढ़ेगी, जितनी घोटोगे उतना नशा चढ़ेगा और फिर ऑटोमेटिक एशिया लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मतलब स्ट्रेस का फार्मूला, ये तो मैं छोड़ देता हूँ, बस ये फोटो देख लो आप बस ना, यही सूक्ष्म शरीर दिखाया ना, मन क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर लाइट की बॉडी है ना, और ये जो है हमारा 7 एनर्जी है, और ये आत्मा की एनर्जी क्या होती है, आत्मा के पास 7 एनर्जी है। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं तो मन के माध्यम से बॉडी में एनर्जी जाती है ना, और ये हमारा शरीर के 8 अंग हैं, तो 7 एनर्जी बॉडी के हर अंग को चाहिए, किंतु एक एनर्जी विशेष है। जैसे ब्रेन के लिए क्या चाहिए, ज्ञान, इसको मैं थोड़ा कल डिटेल में डिटेल करूंगा, ब्रेन के लिए ज्ञान चाहिए, जितना ABCD होगा उतना IQ EQ SQ का बैलेंस अच्छा होगा। प्योरिटी से हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स और इम्यून सिस्टम का कनेक्शन है, जितनी आपकी प्योरिटी बढ़ाओगे उतना 5 सेंस आंखों से अच्छा दिखाई देगा। मेरे को 16 साल की उम्र से चश्मा था, है ना, 16 साल की, और नेगेटिव नंबर 3 था, पॉजिटिव नंबर एक आंख में 1.25, एक आंख में 1.5 था, तो एक प्रोग्रेसिव लेंस लगाता था मैं, है ना। और क्या हुआ अचानक मेरे को, अभी 1.5 साल पहले ही, 1 साल 8 महीने हो गए, मेरा दूर का भी ठीक हो गया, नज़दीक का भी ठीक हो गया, और सिलेंड्रिकल एरर भी थी, कभी कभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी दिखता था, वो सारा ही ठीक हो गया, चश्मा ही हट गया मेरा। लोगों ने हजार का आपकी शक्ल अच्छी लगती, मैंने कहा भले ना लगे, मैं तो चश्मे के बगैर ठीक, चश्मा सारी उम्र लगाया ना, तो चश्मे के बगैर शक्ल अच्छी लगे, लोगों को पहचान में नहीं आती थी, मैंने कहा नहीं आती तो कोई हर्जा नहीं, मैं सही ठीक हूँ, तो चश्मा ही हट गया मेरा ना। तो ये राजयोग का कमाल होता है। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया आँखों का, कुछ भी नहीं कराया, आज मेरे को इतना अच्छा दिखता है, वो भी दिखाई दे, देखो अक्षर वहाँ लिखे ना, शायद आपको नजर नहीं आए, मुझे दिख रहा है सामने क्या लिखा हुआ है ना, सब कुछ दिखाई देता, दूर दूर तक दिखाई देता है, सब कुछ एक्यूरेट दिखाई देता है, नज़दीक का भी उतना ही बढ़िया दिखाई देता है ना, पतले से पतले अक्षर मुझे साफ दिखाई समझ आते हैं। तो भगवान ने मुझे क्या कर दिया है ना, चश्मा हटवा दिया नहीं, तो आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हो आप, है ना, मैंने हटाने की कोशिश नहीं की है, अपने आप ही हट गया। तो नॉलेज प्योरिटी है ना, और शांति से लंग्स का कनेक्शन है, आत्मा शांति की एनर्जी से लंग्स होने, जितना आप शांति रहेंगे, जितना शांत रहेंगे उतनी आपकी लंग्स में ज़्यादा एनर्जी जाएगी, उतना गहरा सांस चलेगा और स्लो चलेगा नीचे तक, पूरा लंग में ऑक्सीजन जाएगी। तो शांति प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, प्राणायाम करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा, हट है ना, हट से किया ना आपने, तो एक स्टडी आई थी पीछे अभी, उसमें बताया गया कि आप 6 महीना प्राणायाम करिए, आपका एंगर कंटेंट पहले और बाद में टेस्ट किया गया, तो क्रोध बढ़ गया था, अबाउट मोर देन 50% बढ़ गया था, एंगर कंटेंट बढ़ गया था, क्योंकि हट से जो भी काम, इसलिए सारे ऋषि मुनि कैसे होते हैं, रामदेव को भी देखो थोड़ी बात पे तैश में आ जाता है ना, गर्म हो जाता है ना, होता नहीं होता है, तो गर्म होना चाहिए क्या, क्योंकि हट से कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, लंग फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ पीस, जितना अधिक पीसफुल रहोगे अपने आप ही आपका सांस 24 घंटा ठीक चलेगा, आधा घंटा आपने लंबे लंबे सांस ले लिए, बाकी टाइम 23.5 घंटा क्या करोगे, ये सारे दिन सांस लोगे लंबे लंबे क्या करोगे, तो प्रेम, इतना प्रेम सबको स्वीकार करोगे दिल से तो आपका हार्ट की आर्टरीज खुल जाएंगी, जितना खुश रहोगे उतना आपकी लिवर अच्छा काम करेगा, आपका डाइजेस्टिव हाजमा अच्छा होगा, एसिड नहीं बनेगा, हाजमा अच्छा होगा, जैसे खुशी जैसी खुराक नहीं, उतना लीवर आपका एचडीएल ज़्यादा बनाएगा, क्लॉट बस्टर ज़्यादा बनाएगा, आंतों में हजमा अच्छा होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्जी नहीं होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा, आनंद से आपका एंडोक्रीन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल्स, गोनेड्स, मेल फीमेल ग्लैंड्स, सातों का बैलेंस हो जाएगा, जीवन म्यूजिकल बन जाएगा। अगर आप सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन का, आनंद की अनुभूति करते हो, तो क्या सातों ग्लैंड्स में सीक्रेशन बैलेंस्ड हो जाते हैं, हारमोनियस हो जाते हैं, और आपका जीवन म्यूजिकल हो जाता है, और उसके बजाय आप 4 से 6 सोते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, तो आपके जीवन में क्या होगा, उसमें आपको सपने आएंगे डरावने, और क्या होगा फिर आपका सारे हारमोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, और उससे फिर क्या होगा, आपका जीवन कैओटिक हो जाएगा, सारा दिन चिंता गुस्सा आता रहेगा, चिड़चिड़ापन आता रहेगा, और फिर सारी 8 शक्तियां जो है मसल्स, जो आपके जोड़ों को, बोन्स को और जॉइंट्स को संरक्षित कर, जितना आप इसका प्रयोग करेंगे उतनी आपके हर जोड़ हड्डियां, कैल्शियम गोली खा के आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होने वाली, या विटामिन डी खा के आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होने वाली, हाइपर विटामिन से डी हो जाए तो भी आप ठीक नहीं होने वाले, सुना आपने, शक्तियां चाहिए। कमर के लिए क्या चाहिए, कछुआ कैसा होता है, चलना है तो पैर निकालता है, चल के फिर पैर अंदर कर लेता है, खाना है तो मुंह बाहर निकालता है, फिर अंदर कर लेता है, मतलब विस्तार को सार में ले आता है हमेशा। और हम क्या करते हैं, सारा टाइम हाथ भी फैला के रखते हैं, मुंह भी फैला के रखते हैं, आँख भी फैला के रखते हैं, नाक भी फैला के रखते हैं, नहीं, सारा दिन फैली रहती है हमेशा, ये बिना बात पे देख रही है, बिना बात पे सुन रही है, बिना बात पे बोल रही है, तो हमारी शक्ति हमारे पास है नहीं, हमेशा विस्तार में रहते हैं हम लोग, और माताएं स्पेशली ज़्यादा रहती हैं, राई का पहाड़ बनाने में एक्सपर्ट होती है ना, पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, तुम्हारी माँ ने ऐसा मेरे को बोला था, अरे माँ तो मर गई, अभी तुम क्या बोला था, तुम्हारी इसने ऐसा किया था, अरे तुमने भी तो बोला था, अपना ध्यान नहीं है, दूसरों ने क्या बोला था उसका ध्यान है, राई का हर में उनको हमेशा, मतलब राई को बार बार पहाड़ बना के दिखा देती है ना, तो कमर जल्दी खराब हो जाती है ना, ऐसे हमारे पास बहुत सारी माताएं, भाई भी ऐसे होते हैं, कई भाई भी ऐसे होते हैं, राई, वो भी राई का पहाड़ बनाना जानते हैं, तो उनको फिर हमने सिखाया कैसे कैसे आप अपने अंदर करो, तो उनकी कमर ठीक हो गई ना। डॉक्टर ने कहा था सर्जरी करानी पड़ेगी, तो वो ठीक हो गए, कमर के अब रिस्क के प्रॉब्लम भी खत्म हो गए, दर्द ही खत्म हो गए। सारी उम्र पेन किलर खा खा किडनी भी खराब कर रहे थे, अब किडनी की अब कोई पेन किलर ही खाना नहीं पड़ता। ऐसे घुटने हैं, ऐसे गर्दन है ना, स्टबर्न नेचर, आप जिद करके ऐसे रखो, मैं नहीं करती, है ना, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। तो आप अगर फ्लेक्सिबल रहना सीख जाओ तो गर्दन की हड्डी ठीक हो जाएगी। घुटने, ये कंधे खराब होते हैं, कंधे क्यों खराब होते हैं, मतलब हर एक के पीछे शक्ति है कोई ना कोई, अब वो शक्तियों को सही ढंग से यूज़ नहीं करते, इसलिए आपकी वो जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उधर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, राइट। तो शक्तियों कनेक्शन है, आप हर जोड़ को ठीक कर सकते हो, बिना ऑपरेशन के ठीक, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना, ऑर्थोपेडिक से आप दूर रहोगे हमेशा, ठीक है। और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिसाब किताब होगा, देने पैसे देने होंगे उसको, तो भले ही फिर तो जाना पड़ेगा, पिछले दिन में लिया होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन से, इसे ना मैं देना पड़ेगा 4 करोड़, 4 लाख तो देना ही पड़ेगा, 4 करोड़ नहीं तो देना ही पड़ेगा, है ना। और एक्सक्रीटरी सिस्टम सातों एनर्जी मिलकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है किडनी से, हमारी किडनी 1 घंटे में सारा खून साफ कर देती है, 24 घंटे में 24 बार डायलिसिस होता है, राइट। और जब आप अपनी टीम को पॉजिटिव बनाते हो, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, सातों एनर्जी का बैलेंस करते हो, सुबह सुबह एनर्जी अपने 4 से 5 के बीच में भरते हो, फिर 8 बजे तक आप चुप रहते हो, तो आपके ये एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है। और 8 बजे कॉर्टिसोल सर्ज होता है, सुबह से लेकर क्या सोचते हो वो डिसाइड करता है कॉर्टिसोल सर्ज कैसा होगा, उससे फिर आपके कॉर्टिसोल सर्ज होता है। और उसके बाद आप प्रॉपर डाइट खाओ, इसके लिए मुरली सुनते हैं हम 8 बजे तक, मुरली का मनन चिंतन पॉजिटिविटी, मुरली क्या है 100% पॉजिटिविटी में, इसलिए प्रॉपर डाइट खाते हैं, प्रॉपर सैर करते हैं, प्रॉपर स्लीप, शुद्ध सात्विक डाइट भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और शुद्ध सात्विक दवाइयाँ, तो हमारी एनर्जी क्या होती है बॉडी के बाहर इकट्ठी होती जाती है, यही हमारा आभामंडल बन जाता है, कवच बन जाता है, फिर हमें कोई बीमारी तंग नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एनर्जी का प्रयोग करते हैं और इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं, ओके। राजयोग मेडिटेशन इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी थ्रू कनेक्शन विद द अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी लाइफ। तो ये हमारा बी नेचुरल, जो भी काम करो नेचुरल बन के करो, अपने को आत्मा समझ के करो, और उसके लिए सातों एनर्जी का बार बार अपने आप को रिमाइंड करो, इसके लिए 4 से 4:45 योग कर लो और आनंद की स्थिति का अनुभव करो। मन के लिए 8 बजे तक चुप रहो और 7 से 8 मुरली का मनन चिंतन करो, उसका से कॉर्टिसोल सर्ज ठीक हो जाएगा। और फिर बॉडी के लिए ईट नेचुरल, है ना, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तीनों चीज़ ज़रूरी हैं। और सुबह सैर करो सनराइज़ के साथ, सनसेट के पहले आप फिर सैर कर लो, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, धीरे धीरे मेडिकेशन छूट जाएंगे, ओके। ओम शांत। चलिए अभी आप हम 1 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे और 7:30 बजे योग करें, 7:30 से फिर 8:30 योग का प्रयोग करेंगे। तो सातों एनर्जी का कैसे हम लोग योग शरीर पर प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम सूक्ष्म वतन में जाने का अनुभव करें, बाबा की गोद में कैसे प्रैक्टिकली जाना है उसका अनुभव करेंगे। ओम शांत। 1 मिनट बाबा को याद करना, फिर आधा पौना घंटा योग करेंगे, खाना खा के 7:30 तक आ जाओ।